अब बाएं, अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएं।
Gracious Heavenly Father, the Almighty God who brought again
ए रहीम आसमानी बाप, कादरे मुतलिक खुदा, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से दोबारा जिंदा किया और इन आखिरी अयाम में पाक रूह की कुदरत के साथ हमें अता किया, हम गैर फानी खुदा की अजीम आमद के लिए भी तेरे शुक्र गुजार है। और अब ए बाप, जब हम एक और घड़ी का सामना कर रहे हैं, वो घड़ी जो बहुत से लोगों की अब्दी सिमत को तब्दील कर सकती है, और ए खुदावन, इस तक रसाई हासिल करने के लिए हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलामे मुकद्दस में लिखा है कि बर्रा ने किताब ली और मोहरों को खोला। ए खुदा के बर्रे, आगे बढ़, हम दुआ करते हैं। ए खुदावंद, अजीम निजात देने वाले, हम तुझे पुकारते हैं, आगे बढ़ और अपनी निजात के प्रोग्राम के भेद को, जो सालहा साल से छुपा हुआ था, आज रात पांचवी मोहर में अयां कर दे ए बाप, और जो कुछ हमारे लिए इसके नीचे है इसको भी जाहिर कर दे, ताकि हम यहाँ से पहले से बेहतर मसीह बनकर निकले और जो काम हमारे सामने है उसको करने के लिए ज्यादा मौजू साबित हों। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। दोस्तों, शब्बा खैर। आज रात इस नादर मौके पर अपने आप को आपके दरमियान पाकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि मैंने अपने आप को किसी भी जगह पर ज्यादा मौजू महसूस किया हो, सिवाय इस बादशाह के काम के। और अब खास तौर से इन असबाक की तरफ आ रहा हूँ, जिनका हमने शिद्दत से इंतजार किया है। अगर खुदावंद इसको मुझ पर आया ना करता, तो मैं आपसे बयान नहीं कर पाता। मैं अपने ख्यालात या कोई और चीज इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जो कुछ खुदावंद मुझे देगा वही ठीक होगा। और मुझे यकीन है, अगर मैं अपने ख्यालात इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि इसको इसी तरीके से बयान करूंगा, तो ये अब भी ठीक होगा और सारी जिंदगी कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम बड़ी ही अजमत के साथ जिंदा खुदा के अजीम पोशीदा हाथ के नहायत ही शुक्र गुजार है, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि हमारे सामने बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। जब हमारे मुल्क का सदर शहर में आता है, तो यकीनन हम उसके लिए झंडे लहराते, सीटियां बजाते, कालीन बचाते और सब कुछ करते हैं। मगर जरा सोचें, ये ठीक होगा और ये शहर के लिए एक एजाज की बात होगी। मगर सोचें, आज रात हमने अपने इस मामूली से टेबरनेकल में बादशाहों के बादशाह खुदा को दावत दी है, और हम नहीं, बल्कि वो ये ख्वाहिश नहीं करता कि उसके आगे कालीन बछाए जाएं, ये इस तरह के काम किए जाएं, बल्कि वो चाहता है कि उसके सामने हलीम दिलों को रखा जाए, ताकि वो उन हलीम दिलों को लेकर उन पर अच्छी चीजों को जाहिर कर सके जो उसने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए जमा कर रखी है। अब हम कहना चाहते हैं, बल्कि मेरे पास एक गवाही है जो मैं देना चाहूंगा। अब देखें, शायद मैं इसे भूल गया हूँ, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ सुना था, और हो सकता है मैं इसमें गलती कर जाऊं। ताहम मेरा ख्याल है कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं जिन पर इस गवाही का तलाक होता है। और फिर चंद रोज पहले मैं अपने घर एरिजोना में था, हमें एक कॉल आई और कहा कि एक छोटा लड़का है जिसको गठिया का बुखार है, जो दिल पर हमला आवर हो गया है, और उसकी हालत ऐसी थी। उसके माँ और बाप मेरे इंतहाई अजीज दोस्तों में से हैं। ये हमारी कलीसिया के डिकनों में से एक है, भाई कॉलिंस। उसका छोटा लड़का नन्ना मेकी खेल कूद में जोए का साथी है। वो दिल के गठिये के बुखार में मुब्तला हो गया है, और डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया है कि वो बिस्तर पर पड़ा रहे। और उसके वालदेन को हदायत की है कि लड़के को बिस्तर से उठने ना दिया जाए, यहाँ तक कि सर भी उठाने ना दिया जाए, इसको पानी पीने के लिए भी ऊपर ना उठाया जाए। इसकी हालत इस कदर खराब थी कि वो स्ट्रोक के जरिए पानी पीता था, लेकिन वालदेन इतने वफादार हैं कि वो यहाँ टैबरनेकल में आए और यकीन किया। चंद रातें गुजरी हैं कि इंतजार ना करने की कोशिश में हमने इतवार को शिफाया इबादत का ऐलान किया था, मगर जब देखा कि वहाँ पर सवालों और जवाबों का सामना करना पड़ेगा तो हमने शिफाया इबादत को नजरअंदाज कर दिया है। फिर मेरे दिल के अंदर कुछ था जिसको मैं अपने दिल के अंदर रखे हुए था, और माँ बाप ये जानना चाहते थे कि वो अपने बच्चे को कमरे में ला सकते हैं। बस वो लड़के को वहाँ ले आए और पाकरू ने उसको वाज़े तौर पर शिफा दे दी। बच्चे के वालदेन इसकी कदर करते हुए बच्चे को घर वापस ले गए और फिर स्कूल भेज दिया, बस उसे स्कूल भेज दिया। जब डॉक्टर को पता चला तो डॉक्टर इस बात से ज्यादा खुश नहीं था, तो उसने बच्चे की माँ को बताया कि बच्चे को बिला शुबा बिस्तर पर होना चाहिए था, मगर माँ ने डॉक्टर को कहानी सुना दी। मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ वो एक तंजीमी मसीही ईमानदार था, वो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया से तल्लुक रखता था डॉक्टर। बस उसने कहा ठीक है, अब देखते हैं, अब वक्त है कि मैं इस बच्चे का मुआयना करूं, और कहा फिर भी आपको इसका मुआयना जरूर करवाना चाहिए। माँ ने कहा ठीक है। वो लड़के को नीचे ले गई और डॉक्टर ने उसके खून के जरिए उसका मुआयना किया जहाँ गठिया का बुखार था। मुझे पता चला कि डॉक्टर इस कदर हैरान था कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। छोटा लड़का बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो गया था, कुछ भी न मिला। क्या अब कॉलिंस यहाँ है? हो सकता है मैंने कुछ गलत कहा हो, मैं चाहता था। क्या ये बात सही है बहन कॉलिंस? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो छोटा मिकी कॉलिंस है जिसकी उम्र 6 या 7 साल है, और ये वाकया इसी जगह 3 रातें पहले हुआ था। हो ऐसा कि इस जगह में बनी नो इंसान के अलावा कोई और भी मौजूद था, और वो कादरे मुतलिक यहोवा था। ये सच है जो अपने कलाम को अजमत देने के लिए आता है, और मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, समझे? और मैं जानता हूँ कि हम सब खुश हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सब खुश हैं, क्योंकि अगर वो मेरा या आपका बच्चा होता तो क्या होता। और याद रखें कि मैं तो इधर उधर से गवाही तलाश करके दे रहा हूँ, मगर ऐसे वाकयात हर जगह हो रहे हैं। मगर आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी खिदमत इलाही शिफा पर मबनी है, लेकिन आप देखें कि मैं यहाँ मोहरें बयान करने आया हूँ, क्योंकि थोड़े अरसे बाद आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये सब कुछ क्यों करता था। और बस मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं कोई थियोलॉजियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, और मैं खुदावंद से प्यार करता हूँ। और अब अगरचे अब इस पर पिछली रात हमने एक छोटी लड़की के मुतालिक गवाही दी, मुझे उसका नाम मालूम है, और बिली इसको यहाँ लाया है, और इसके वालदेन भी अब यहीं कहीं मौजूद हैं, और मैं जानता हूँ वो कौन है। और ये छोटी बच्ची खून के सरतान की आखिरी मंजिल पर थी, तकरीबन इसकी हालत इस कदर खराब थी कि मुंह के जरिए इसको कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं जा सकता था, और इसको बल्कि सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि इसकी नसों के जरिए खून तब्दील कर दिया जाए। ये छोटी सी प्यारी बच्ची है, ये अपनी उम्र से छोटी लगती है, मेरा ख्याल है कि इस बच्ची की तरह जो यहाँ बैठी हुई है, लेकिन ये तकरीबन बड़ी मालूम होती है, और ये लोग हमारे जैसे ही दिखाई देते हैं। आप बच्ची के लिबास को और इस बच्ची के वालदेन को देखकर बता सकते हैं कि ये बहुत ही गरीब, बल्कि बहुत ही गरीब है, लेकिन तो भी वो हकीकतन बड़े आजजाना किस्म के लोग हैं। और रूह कुदस ने ऐलान किया कि इस बच्ची को शिफा मिल गई है। अब जरा इसके मुतल्लिक सोचे, जो सरतान के मर्ज में मुब्तला थे और खून इस कदर खराब था कि अब इसको बजरिया मुंह कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जा सकता था, और अब उसे अस्पताल जाकर खून लगवाना या नसों के जरिए खून तब्दील करवाना पड़ता था। मेरा अंदाजा है कि इसकी खुराक ग्लूकोज या कोई और चीज थी, मुझे इल्म नहीं इसकी तिब्बी असलाह क्या है, लेकिन बहरहाल इस तरीके से इसको गजा पहुंचाई जाती थी। मगर लड़की ने ये जगह छोड़ने से पहले हैमबर्गर मांगा, और वालदेन ने रूह कुदस से खुदावंद यू फरमाता है सुना। वो अजनबी थे, इससे पहले कभी नहीं आए थे, मगर वो और इस खुश लबास बूढ़े जोड़े ने सिर्फ चंद मिनट पहले ही वहाँ जगह हासिल की थी। भाई और बहन किड ने इनको समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है और क्या कुछ सुनना है। और बच्ची ने घर की तरफ जाते हुए रास्ते में खाना खा लिया। और इस वाक्य के 2 या 3 दिन बाद जब वो स्कूल में थी, बच्ची डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर इस कदर हैरान था कि उसने कहा, अब बच्ची में जरा भी सरतान का मर्ज नहीं पाया जाता। देखें, यहाँ पर ये बात काबिले जिक्र है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कादरे मुतली की कुदरत ने उसी वक्त खून की नदी बहाकर उसके खून को साफ कर दिया। बस ठीक इस तरह उसने उसकी नब्ज में नई जिंदगी बहाल कर दी, क्योंकि आपका खून ही आपकी जिस्मानी जिंदगी है। इस तरह खून के नए खलिये पैदा हो गए और पुराने खलिये साफ कर दिए। और ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगा ये कादरे मुतलिक खुदा का तख्लीकी अमल है कि उसने सरतान वाले खून को, जो कि कैंसर से लबरेज था, जिसकी वजह से खून बह चुका था और छोटी लड़की बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी और सूज गई थी, कुछ ही लम्हों में नया खून बनाया और उसे जारी कर दिया। मुझे यकीन है, ये मैं खुदावंत की तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये मैं अपनी तरफ से, अपने ईमान के मुकाशफे से कह रहा हूँ कि अगले दिन वादी सबीनों में क्या हुआ था। मैं यकीन रखता हूँ कि वो घड़ी आ पहुँची है कि खोए हुए इंसानी अज़ा फिर से खाल के हकीकी की जलाली ताकत में बहाल किए जाएंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि अगर वो गलहरी को बना सकता है जिसका वजूद ही नहीं था, तो क्या किसी आदमी या औरत का खोया हुआ उज़्र नहीं बना सकता? इंसान भी तो एक जानवरी की तरह है, लेकिन वो खुदा है, मैं उसे प्यार करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इन मज़ामीन को शुरू कर लिया है और हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि लोग दीवारों के साथ और कमरों और हॉल वगैरह में खड़े हैं। बस मैं बिल्कुल अपने पैगाम की तरफ सीधा आता हूँ, और अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हर जगह मौजूद है। और आज के दिन, जबकि मैं 5वीं मोहर के मुतालिक बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था, मगर आज सुबह दिन निकलने से 1 घंटा पहले जब मैं बाहर दुआ में मसरूफ था, तो बिल्कुल उसी पोशीदा तरीके से मेरे पास आया। और आज, बल्कि मैंने गुज़िश्ता 5 या 6 दिन एक छोटे से कमरे में गुजारे हैं और किसी से मुलाकात तक नहीं की, फक्त बाहर जाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ सिर्फ और सिर्फ खाना खाता था। और बेशक आप जानते हैं कि वो दोस्त कौन है, ये भाई और बहन वुड हैं, जी हाँ। और आपको मालूम है कि जब मैं वहाँ गया और उनके साथ ठहरा, तो वहाँ पर हर एक मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, और वहाँ पर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, बल्कि सादगी थी। मैं सिर्फ मोरों के पैगाम पर ही रहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये अहम है। मैं यकीन रखता हूँ कि अब इस मुकाशवा के जाहिर होने की घड़ी आ गई है, और अब मैं चाहता हूँ क्या पूर्ण यकीन हो जाए, जल्दी से शुरू करने से पहले, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, आप उन 7 मोहरों में से जिस पर आपको समझ नहीं आई, या अगर आपके पास पहले से कुछ लिखा हुआ मौजूद है, तो इसको अपने बेंच पर रख दें, और शायद भाई नेवल या कोई और यहाँ पर एक बॉक्स रख दे। ओ, यहाँ मैं इन्हें देख सकता हूँ, ये अच्छा है। बस मैं इनको आज रात ही लेकर इनका मुतालिया करूँगा, ताकि इतवार की सुबह के लिए तैयारी कर सकूँ। अब देखें, इस वक्त नहीं, इस वक्त बिल्कुल नहीं, अब इसकी कोई दरखास्त ना बनाए और कहें कि क्या ये पाकरू का सबूत है, समझे? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ जो मैंने सिखाया है, देखें, ताकि इस तरह हम एक मजमून हासिल कर सकें, जैसे कि कलीसिया जमाने। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही है जिन पर हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, तो शायद उसमें मुख्तलिफ दुआएं हों। आप जानते हैं कि आपको छुआ गया है और आप मुख्तलिफ काम के लिए आए हैं, और आप खुदा को इसके लिए तलाश कर रहे हैं ताकि उसे पा लें। खुदावन, क्या आज रात यहाँ कोई तुझे पाने के लिए होगा? जी हाँ, ये जर्द लबास में मलबूस एक बहन होगी, और वो दाएं कोने में बैठी होगी, और खुदा ने बताया कि जब तुम उसको पुकारो, तो उसे ऐसे पुकार कर कहना, और उसे ये बताना कि तूने ऐसे ऐसे किया है, और उसके पास ये है, और फिर तू वहाँ नीचे जाना और देखना, और वो वहाँ होगी, समझे? देखें, ये रहे आप, ये कैसा मुख्तलिफ है, समझे? और मैं इस तरह दुआ कर रहा हूँ, ऐ खुदावंद यीशु, इसकी तफसीर क्या है, ये भेद मुझ पर अयां कर दे, आमीन। अब आए अपनी तलवारें, यानी कलामे पाक को दोबारा निकालें। मैं भाई नेवल की रूहानी मदद और उसकी बरादराना मोहब्बत की दाद देता हूँ, जो कि यहाँ मेरे पीछे बैठे हुए हैं, मेरे और आपके लिए, और जो दूर हैं, उनके लिए भी दुआ में मसरूफ हैं। और अब आज जुमे की रात है, हम इसको इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे जैसे हम आपके लिए मुमकिन नहीं है कि तमाम चीजों को छू सके आप, क्योंकि आप मोहरों में से सिर्फ एक ही को पकड़े और उसे ठीक कलामे मुकद्दस के मुताबिक देखते जाएं। देखें, आपको महीनों महीने लग जाएंगे मगर फिर भी आप उसे हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मोहर बजाते खुद पूरे कलाम यानी सिर्फ एक ही मोहर पदाइश से लेकर मुकाशवा तक बंधी हुई है। बस मेरी अब ये कोशिश है कि इसकी तवालत से बचने का रास्ता निकालूं। बस मैं कलाम को मुख्तसर करूंगा या इस तवालत से बचने के लिए कहीं छोटे छोटे हवाले दूंगा। मैं मोहतात रहूंगा कि मैं सिर्फ एक चीज पर कलाम जारी रख सकूं। मुझे पीछे भी देखना है क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूं। मैं ताबे होकर बोलता हूं। मेरा ईमान है कि ये मुकम्मल तौर पर रूह का कलाम है, और जब कभी मैं नीचे देखता हूँ तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं एक मजमून से हटकर बोल रहा हूँ। तब मैं वापस आता हूँ तो इसको दूसरे अंदाज से देखता हूँ कि मैं कोई हवाला तलाश करूँ ताकि मैं अपने मजमून पर आ सकूँ, आप समझे, ताकि इससे हटकर बोलने की बजाय मैं अपने मजमून पर रोशनी डालूँ। बस आज रात खुदावंद के फजल करम से और उसकी मदद से हम पांचवी मोहर का मुतालिया करने वाले हैं, और ये छोटी है मगर पहली से जरा लंबी है। अब चार घोड़सवारों का जिक्र दो आयात में है और इसका जिक्र तीन आयात में है। अब पांचवी मोहर का जिक्र मुकाशवा छठे बाप की नौवीं आयत में है। अब अगर आप अजनबी हैं और इससे पहले आपने कभी चार घोड़सवारों का जिक्र नहीं सुना तो ठीक है, आप देखें, जब आप टेप या इस किस्म की किसी चीज को सुन रहे होते हैं तो इसको रोककर पीछे करते हैं, और इस अमल से आपकी तवक्को ये होती है कि लोग इसको समझ सकें। बस अगर वहाँ कोई छोटी सी भी चीज है जिसको आप नहीं समझ सके तो ठीक है, तो इसे दोबारा सुन लें या टेप लें और उसे सुने, और मुझे उम्मीद है कि आप बरकत पाएंगे। मैंने पाई है, मैं तवक्को करता हूँ कि आप ऐसा ही करते हैं। अब हर एक नौवीं आयत से ग्यारहवीं आयत तक तैयारी करें, इसमें ग्यारहवीं आयत भी शामिल करें। और जब उसने पांचवीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब और गवाही पर कायम रहने के सबब मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोले, ए मालिक, ए कदूस बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन पर रहने वालों से हमारा बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और कहा गया, और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। अब देखें, ये किसी हद तक पोशीदा है, और अब टेपों के लिए उस्ताद और खादम भाइयों की खातिर जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, अब अगर आपका नजरिया इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ है जैसा कि मेरा भी था, मगर मैं इसे सिर्फ रूह की तहरीक से बयान कर रहा हूँ जिसने मेरा नजरिया भी इसके मुतल्लिक बिल्कुल तब्दील कर दिया है, समझे, और मैंने महसूस किया है जैसे ही आप इन मोहरों को खोलते और देखते जाते हैं ये बिल्कुल वापस जाती हैं, और कलीसिया जमानों और कलाम दोनों को यकजा करके आपस में जोड़ देती हैं, समझे, और यही सबब है कि मैं ईमान रखता हूँ ये खुदावंत की तरफ से है। अब हमने इस बात को महसूस किया है, और मैं सोच रहा था कि बाज़ औक़ात इस जमन में हम किसी बहुत बड़े उस्ताद की कही हुई बात पर यकीन कर लेते हैं, समझे, और ठीक भी है। मैं किसी भी तरह से मैं उस्ताद को रद्द नहीं करता, और ना ही मैं किसी और को रद्द करता हूँ। मैं सिर्फ गुनाह और बेएतकादी को रद्द करता हूँ, किसी और को नहीं। कुछ लोगों ने कहा है कि आप तंजीमों की मजम्मत करते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। मैं तंजीम के उस तरीके कार की मजम्मत करता हूँ, ना कि इसमें शरीक लोगों की और ना ही उस ग्रुप की जिसने वो तंजीम तशकील दी है, आप समझे, बल्कि उस निजाम की मजम्मत करता हूँ जिसके तहत वो चल रहे हैं। ये है वो चीज जिसको मैं रद्द करता हूँ, खा वो कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट। ए खुदा, मैंने मेरे बेहतरीन दोस्तों में से बाज जिनको मैं जानता हूँ वो कैथलिक हैं। देखें, क्या आप इस बात को महसूस करते हैं, और शायद आज रात यहाँ एक साहिब बैठे हुए हैं, और ये टैबरनेकल सिर्फ इस वजह से तामीर हो सका कि एक रोमन कैथलिक शख्स ने, जो कि मेरी खातिर अदालत के सामने खड़ा हो गया था, और ये काम कोई और दूसरा नहीं कर सकता था। ये सच है, और वो इस आदमी को रद्द ना कर सके, ये बिल्कुल सच है। और कहा, हमने गिरजाघर के लोगों की गिनती की है, उनका शुमार बहुत ज्यादा है। उसने कहा, ओ गिरजाघर 80 से ज्यादा नहीं है, ये बात इस तरह है। उसने कहा, ये गिरजाघर वहाँ मौजूद खड़ा है। उसने कहा, मैं पास्टर साहब को जानता हूँ और ये बात इसी तरह है। उसने कहा, गिरजाघर उसी जगह खड़ा है। उसने कहा, अगर आप इससे ज्यादा जमा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। वो रोमन कैथोलिक है लेकिन मेरा एक अच्छा दोस्त है, समझे? जी हाँ, एक लड़का जो कि कैथोलिक है और मेरा बहुत ही हकीकी अजीम दोस्त है, मुझसे बातचीत कर रहा था। मेरे जाने से पहले उसका एक खास हार्डवेयर स्टोर था। उसने कहा, बिली मैं जानता हूँ तुम हमारे मजहबी निजाम पर यकीन नहीं रखते। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, खुदावन ने हमारी खातर तुम्हारी बहुत सी दुआएं कबूल की हैं और मुझे यकीन है कौम में तुम अगर कभी किसी मुसीबत में फंस गए और कहा तो मुल्क के तमाम कैथोलिक तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। बस आपने ये देखा, उसने कहा हर एक स्लीब तुम्हारी मदद करेगी। उसने इसी तरह कहा था, मैं सिर्फ उसी तौर से बता रहा हूँ जिस तरीके से उसने कहा था। बिलाशुबा वो सबसे पहले मसीह होने का दावा करते हैं जिनकी कमर पर सलीबें लादी गईं। हम इसको तारीखी इतबार से भी जानते हैं। अगरचे उनका दावा है वो सबसे पहले मसीही हैं और उनका दावा दुरुस्त भी है, मगर इस निजाम की वजह से वो सही रास्ते से भटक गए हैं, समझे? और वो लोग चाहे कैथोलिक या यहूदी या जो कोई भी हो, वो बनीनो इंसान है और जिस दरख्त से वो है उसी दरख्त से हम हैं, समझे? ये सच है। वो लोग प्यार करते, खाते और पीते और सोते हैं बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह। बस हमें कभी भी किसी को इंफरादी तौर पर रद्द नहीं करना चाहिए, नहीं, किसी को नहीं, समझे? हमें इंफरादी तौर पर किसी को रद्द करना नहीं चाहिए, लेकिन एक खादम होते हुए मुझे इस सांप को जड़ से काटना है जो कि उन लोगों को काट रहा है, समझे? और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे ये खुदावंत की तरफ से हुक्म ना मिला होता तो मैं अपने आप से ये नहीं कर सकता था, और मेरा फर्ज है कि मैं इस हुक्म को बजा लाऊं, समझे? और इस हुक्म की ताबेदारी मुझे सच्चाई और ईमानदारी से करनी चाहिए। लेकिन अगर कैथोलिक, यहूदी या जो कोई भी है यहाँ आता है, चाहे अगर वो मुसलमान, यूनानी या ऑर्थोडॉक्स या कोई भी हो, अगर वो दुआ की गर्ज से यहाँ आता है तो मैं उसके लिए संजीदगी से दुआ करूँगा जिस तरह मैं अपने किसी के लिए करता हूँ। ये सच है बेशक, क्योंकि वो बनीनो इंसान है। और मैंने बुद्ध मत, जैन मत और सिख और मुसलमानों और हर किस्म के लोगों के लिए बिल्कुल उसी तरह दुआ की है, समझे? और मैं बिल्कुल उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ करता हूँ क्योंकि वो लोग हैं, वो बनीनो इंसान हैं जो तंदुरुस्त होना चाहते हैं ताकि जिंदगी की राह उनके लिए आसान हो सके। अब हम एहसास करते हैं कि यहाँ पर और आप में से बहुतों को मैं जानता हूँ, और यहाँ कम से कम दो या तीन हकीकी आलम बैठे हुए हैं और वो बहुत ही काबिल हैं और उन्होंने इस मजमून पर दूसरे लोगों के नजरियात का मुतालिया किया हुआ है। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि वो भाई जान लें कि मैं इन आदमियों को रद्द नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ जो खुदावन ने मुझ पर जाहिर किया है और यही सब कुछ मेरे पास है। अब देखें, हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि एक मामूली धोबन या मामूली किसान लड़के को खुदा की तरफ से मुकाशवा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब देखें कि खुदा खुद को सादगी में जाहिर करता है। यही कुछ है हमने इस इतवार शुरू से लेकर आखिर तक देखा है कि किस तरह उसने अपने आप को सादगी में जाहिर किया था, और यही चीज उसको अजीम बनाती है। अब आए, मुझे सिर्फ एक मिनट के लिए जायजा लेने दें कि वो कौन सी बात थी जिसने खुदा को अजीम बनाया। खुदा अजीम है और उसने अपने आप को इतनी सादा शक्ल में पेश किया कि इस दुनिया के दानिश्वर लोग उसको पहचान ना सके। उसने अपने आप को इतना सादा बना दिया कि ये उसको हासिल ना कर सके। अब गौर करें, वो अपने आप में यीशु मसीह के मुकाशवा का एक भेद है, समझे? वो खुद उसी में और उससे खुदा से बढ़कर कोई अजीम नहीं है, और आप कोई ऐसी सादा चीज नहीं बना सकते जैसा खुदा ने अपने आप को सादा बना दिया। देखें, यही वो बात है जो उसको अजीम बनाती है, समझे? अब देखें, एक बड़ा आदमी थोड़ी सी शफकत दिखा सकता है, शायद अपने आप को झुकाकर आपसे इतना पूछ ले कि आपका क्या हाल है, आपसे इस तरह का कोई और जुमला कह दे, लेकिन वो अपने आप को छोटा नहीं बना सकता। बस इसके मुतल्लिक यही बात कही जा सकती है कि वो बनी नो इंसान है। वो अपने आप को छोटा नहीं बना सकता है, क्योंकि जब वो खुद को छोटा बनाने के लिए नीचे करता है, तब आप जानते हैं पहली चीज क्या होती है। फिर वो किसी और का हवाला देता है कि उसने क्या कहा था, और फिर वो दोबारा खुद को ऊपर खींचना शुरू कर देता है। आप समझे? मगर खुदा में बड़ा होने के लिए छोटा होना पड़ता है। जी हाँ, दुनिया के दानिश्वर लोग उसको अपनी अकलमंदी से तलाश करने की कोशिश में हैं, और वो ऐसा ही कर रहे हैं और रास्ते से भटक गए हैं। देखें, ऐ दुनिया के दानिश्वरों, अगर तुम अपने इल्म या रियाजी के जरिए कुछ बयान करना चाहते हो, तो याद रखें, उसने यहाँ बाइबल में मुकाशवा में नहीं, मैं आपसे माजरत खा हूँ, मेरा ख्याल है ये साया 35 में है, और इतना आसान है कि एक गुनाहगार आदमी भी इसको समझ जाएगा, और देखें हो बेवकूफ भी इसमें गलती नहीं करेगा। दानिश्वर अपनी अकलमंदी के सबब से उसको बहुत पीछे छोड़ गए हैं, या उसको अपनी अकलमंदी से तलाश करने की कोशिश में उससे बहुत आगे निकल गए हैं। अब इसको मत भूले, ये टेप किया जा रहा है कि दानिश्वर उसको अपनी दानिश्वरी से तलाश करते करते उससे बहुत दूर निकल गए हैं, उन्होंने उसे खो दिया है, समझे? लेकिन अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की बजाय सादा बना लेते तो उसको पा लेते। बस अगर आप बहुत बड़े हैं तो अपने आप को छोटा बना दें, आप समझे? और आप जानते हैं यही सच्चाई है। मैं लोगों के पास, उनके दफ्तरों में गया और वगैरह वगैरह, जो कि हकीकत में ऐसे आदमी हैं जो कि बड़े बादशाह और ताकतवर और शहनशाह हुक्मरान थे, और इसमें ममूल वो बहुत ही बड़े लोग थे। फिर मैं ऐसी जगहों पर भी गया हूँ जहाँ एक लड़का कपड़े तब्दील करता है। हो सकता है कोई खादम इस सिलसिले में मुझसे बहस करना चाहे, और आप सोचते होंगे कि उनके बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती, देखा, और उनके जहन में बड़ा गुरूर होता है, समझे? मगर एक बड़ा आदमी या एक अजीम आदमी नीचे जमीन पर बैठकर ये सोचने की कोशिश कर सकता है कि ऐसा आप सोचते हैं कि वो बड़ा आदमी है, समझे? देखें कि इस तरह वो अपने आप को हलीम कर सकता है, और आप देखें कि खुदावंद कितना अजीम है। वो अपने आप को इस हद तक हलीम कर सकता है कि बनी नो इंसान इस हद तक पहुँच ही नहीं सकता, आप समझे? बात खत्म हुई। और वो उसको तलाश करने की कोशिश में है। अब देखें, वो कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों को स्कूल भेजकर बीए की डिग्री हासिल करवाकर उसे हासिल कर लें, और वो उसे इल्म इलाहियात और बाइबल की असलाहत से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे अपने तालीमी प्रोग्रामों में और तंजीमी प्रोग्रामों में और बाकी चीजों को खूबसूरत बनाकर उनमें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ हवा से लड़ रहे हैं, बस यही बात है। आप उससे दूर होते जा रहे हैं। लोग जिस कदर चाहें सादा बनकर बड़े बन सकते हैं, और इस तरह वो सादगी की तरफ कदम बढ़ाते हुए खुदा को हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अकलमंदी की तरफ जा रहे होते हैं, वैसे वैसे आप खुदा से दूर हो रहे होते हैं। अब मुझे ये याद दिलाने दें, ताकि आप इसको खोना दें, कि जब तक आप खुदा को अपनी अकल और दानाई से तलाश करने की कोशिश में रहते हैं, जैसे बागे अदन में हुआ, जैसे मूसा के दिनों में हुआ, जैसे नूह के दिनों में हुआ, जैसे मसीह के दिनों में हुआ, जैसे यूहन्ना के दिनों में हुआ, और जैसे रसूलों के दिनों में हुआ, और इसी तरह आज भी हो रहा है। लेकिन जब आप खुदा को अपनी अकल और दानाई से समझने और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप उससे और भी ज्यादा दूर हो जाते हैं। आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि उसे कबूल करें, समझे? उस पर ईमान रखें और उसको समझने की कोशिश मत करें। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो मैं समझ नहीं पाता, ऐसा क्यों है? बहुत सी बातें हैं जिनको मैं समझता हूँ, और कुछ ऐसी हैं जिनको मैं नहीं समझता। मुझे समझ नहीं आती यहाँ बैठे हुए नौजवान किस तरह वही खुराक खाते हैं जो मैं नहीं खा सकता, और यहाँ एक नौजवान बैठा है जिसका सर बालों से भरा हुआ है मगर मेरा नहीं है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। वो मुझे कहते हैं ये कैल्शियम की वजह से है, और मेरी उंगलियों के नाखून भी ज्यादा नहीं है कि मैं इनको काट सकूं, और ना ही बाल हैं जिनको कटवा सकूं। मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। जैसे एक पुरानी कहावत है, मैं यहाँ ये संजीदा मुद्दा बिल्कुल तब्दील नहीं कर रहा, मगर यही संजीदगी है, लेकिन मैं अभी तक मोहर तक नहीं पहुँचा। ये कैसे मुमकिन है कि स्याह भैंस हरी घास खाए और सफेद दूध दे और जर्द मक्खन निकले? देखें, मुझे यकीन है मैं इसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अब देखें, हर एक चीज दूसरी की पैदावार है। ये कैसे मुमकिन है, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं ये बयान नहीं कर सकता इस शोषण के दो फूल किस तरह खड़े हैं, या एक ही किस्म के दो फूल जिनमें से एक का रंग लाल और दूसरे का जर्द है, और एक नीला तो दूसरा भूरा है। ये मेरी समझ में नहीं आता, जबकि वही सूरज सब पर चमकता है, तो फिर ये रंग कहाँ से आ गए? देखें, मैं ये बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपको इसे कबूल करना पड़ेगा। मेरी ख्वाहिश है कि कोई बड़ा थियोलॉजियन मुझ पर वाजे कर दे कि ये दुनिया किस तरह महवर में खड़ी है। मुझे मालूम है आप सेंसी एतबार से हवा में गेंद फेंक कर दिखाएंगे, लेकिन वो गेंद दोबारा वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, मगर ठीक इसी जगह पर ये एक दूसरी गर्दिश होती है। हालांकि आप ये नहीं कर सकते, मगर फिर भी इसका कामिल तौर पर वक्त मुकर्रर है, और वो सूरज ग्रहण के लिए आज से आने वाले 20 साल के मिनटों तक का वक्त बता सकते हैं। हालांकि जब उनके पास कोई घड़ी या घड़ियाल या मशीनरी का एक पुर्जा भी नहीं था, ये उस वक्त भी कामिल था और आज भी उसी तरह कायम है। और फिर माजी में जाकर देखें, मगर इसको थोड़ा सा सीधे जाविये से देखें तो ये क्या है? जी हाँ, तो फिर आपकी तमाम तर कोशिशें बेवकूफी नजर आएंगी, समझे? बस आप देखें, उसको समझने के लिए अपनी अकल इस्तेमाल ना करें, फक्त उसकी बातों पर ईमान रखें कि वो क्या कहता है, और जितना छोटा और सादा बन सकते हैं बन जाएं, फिर देखें आप उसे हासिल कर लेंगे। अब मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इसके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने अपने आप को इस कदर सादा बना दिया। अब हम 6वें बाप की 9वीं आयत पढ़ते हैं। अब मुझे शुरू करने दें। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। गौर करें, इस 5वीं मोहर के ऐलान के वक्त किसी दूसरे जानदार या मखलूक का जिक्र नहीं किया गया। अब याद करें, ये 4थी मोहर पर किया गया था। ये पहली मोहर, दूसरी मोहर और तीसरी और 4थी मोहर पर इसका जिक्र किया गया था, मगर यहाँ नहीं किया गया, समझे? अगर आप तवज्जो दें तो पिछली मोहरों में से सिर्फ एक को पढ़ें। आए वापस 4थी मोहर पर चलें और 7वीं आयत पढ़ते हैं। और जब उसने 4थी मोहर खोली तो मैंने 4थे जानदार को ये कहते सुना कि आ और देख। और जब उसने 3री मोहर खोली तो मैंने 3रे जानदार को ये कहते सुना आ और देख। और दूसरे जानदार ने भी यही कहा कि आ और देख, और पहले ने भी यही कहा आ और देख। लेकिन जब हम 5वीं मोहर पर आते हैं तो यहाँ पर कोई जानदार नहीं है। अब सिर्फ तवज्जो दें। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे देखा। जल्दी से इसको देखें, वहाँ पर कोई जानदार नहीं था, और जानदार ताकत को जाहिर करता है, हम जानते हैं। देखें, वहाँ कोई जानदार नहीं है। अब देखें, उन जानदारों में से हर एक को हमने मुकाशवा की कलीसियाओं के मुताले के दौरान देखा था। उनमें से एक शेर था, और दूसरा एक बैल था, और फिर अगला आदमी था, और फिर अगला उकाब था। हमने कलीसियाई दौर में देखा कि 4 जानदारों का मतलब 4 ताकतें हैं, जो कि रसूलों के इमाल के गिर्द फैली हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के बियाबान में खैमा इज्तमा के गिर्द फैली हुई थी। और आप इसको समझ चुके हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको समझने के लिए मजीद वक्त लें। कैसे हमने इसका नक्शा खींचकर आप पर हकीकत जाहिर कर दी थी। वो इस पर गौर खोज कर रहे थे, बर्रा और कलाम, जैसा कि उन्होंने पाक मकाम पर अहद के संदूक के साथ बियाबान में किया था, और वगैरह वगैरह। अब देखें, इसराइल की हालत को हमने इसके कबीलों के रंगों को दिखाकर बयान किया था, और इसके अलावा आप में से कितनों ने 7 कलीसियाई अद्वार के मुतालिक सुना था? मेरा ख्याल है कि काफी लोगों ने सुना था, आधों ने या 2/3 ने सुना। गौर करें कि जानदार की फितरत ही कबीले की अलामत थी। इन 4 को एक तरफ कर लें, 12 कबीलों के झुंड में से 4-4 को एक तरफ कर लें, या 3-3 कबीले हर तरफ कर लें, और ये 4 जानदार मुकरर है कि 4 अतराफ से 12 कबीलों की निगरानी करें। और जब हम आगे बढ़े और हमने अनाजील को लिया और हकीकत को दिखाया कि जब आप अहद में दाखिल होते तो वो अहद की निगरानी कर रहे होते थे। फिर हमने इस बात को लिया कि रूहे जमीन पर रूह कुदस नई कलीसिया के अहद की नुमाइंदगी करता है। हमें वो खून रूह कुदस की सूरत में वापस कर दिया गया है। और चारों जानदार इसराइल के 12 कबीलों को जाहिर करते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं, और उनकी फितरत को दरियाफ्त करने के बाद और उनकी फितरत को मद्देनजर रखते हुए जब उनको इन चार अनाज झील में से हर एक पर लागू किया गया तो कामिल तौर पर बिल्कुल वही फितरत थी। एक शेर के मसा के साथ बोला, दूसरा बैल के मसा के साथ, और फिर अगला, इसी तरह चारों अनाजील हैं, और यही बात यहाँ पर है। चारों अनाजील पाक रू की मुहाफिज हैं। आमीन। मैं हमेशा हैरान होता हूँ और ये बात मुझे चुभती है। अब मेरा अंदाजा है कि ये तकरीबन 6 साल पहले की बात है जब मैंने एक बड़े आदमी को ये कहते सुना कि रसूलों के इमाल महज एक खाका है, और मैंने उससे ये कहते हुए कई मर्तबा सुना है। लेकिन एक ऐसे आदमी के मुंह से ये बात सुनकर जिसका रुतबा बतौर उस्ताद और मुबल्लग बहुत बुलंद हो, जिसने बहुत सी मशहूर किताबें भी लिखी हों, जिनको लोग हर जगह पढ़ते भी हों, और ऐसा आदमी अगर ये कहे कि रसूलों के इमाल को कलीसिया में सिखाया जाना मुनासिब नहीं है, जबकि रसूलों के इमाल ही उसकी बुनियाद है, ना कि वो कोई खाका है, वो बुनियाद है, क्योंकि बाइबल फरमाती है खुदा की बुनियाद रसूलों की तलीम पर तामीर है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर मसीह है। ये सच है। और जब उस आदमी ने वहाँ खड़े होकर ये बयान दिया था तो मैंने सोचा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने सोचा कोई तज्जुब नहीं, लेकिन अब मैं ये सब मोहरों में देखता हूँ, क्योंकि तब ये जाहिर नहीं हुई थी। बस यही सब कुछ है, समझे? बस वो वहाँ खड़े थे, मगर वहाँ पर कोई था जो ये कह रहा था। अब गौर करें कि उन्होंने निगेबानी की। अब जब हम मत्ती 28:19 को लेते हैं और इस बात को मत्ती के जरिए लेकर चलते हैं, जो कि शेर की नुमाइंदगी करता है, और यहाँ आगे आते हुए हमें इस हकीकत का पता चलता है कि क्यों उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, और वहाँ वो अपने उसी कलाम के साथ खड़ा था ताकि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे के उस मुकद्दस भरोसे की हिफाजत करे। ठीक है, खैर अब मैं कलीसिया या द्वार से बाहर आ रहा हूँ, लेकिन गौर करें, जब हम यहाँ 5वीं मोहर पर आते हैं तो यहाँ पर कोई सवार नहीं है जो आगे बढ़ता है, और कोई जानदार नहीं है जो ऐलान करता है। यूहन्ना ने सिर्फ बर्रे ने उसको खोला, और यूहन्ना ने सिर्फ उसको देखा। वहाँ पर कोई ये कहने वाला ना था, आ और देख, तवज्जो दें, किसी जानदार मखलूक की ताकत यहाँ नहीं है, कोई नहीं। और 6वीं मोहर पर वहाँ ऐलान करने के लिए कोई जानदार नहीं है, और 7वीं मोहर पर वहाँ पर ऐलान करने के लिए कोई जानदार मौजूद नहीं है। देखें, वहाँ ऐलान करने के लिए कोई ताकतें मौजूद नहीं है। देखें, किसी ने ऐलान नहीं किया। लेकिन अब इस पर देखें, 4वीं मोहर के बाद, यानी इसके बाद 5वीं, 6वीं और 7वीं मोहर का ऐलान करने के लिए कोई जानदार या ताकत मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं है। अब देखें, मैं इसको पसंद करता हूँ, जैसा कि 4 मुख्तलिफ घोड़ों के सवार के वक्त 4 मुख्तलिफ घोड़ों का सवार एक ही था, मगर वहाँ पर एक जानदार भी था जिसने ताकत का ऐलान किया। हर मर्तबा जब घोड़सवार दूसरा घोड़ा लेता और आगे बढ़ता, तो इसी तरह कोई दूसरा जानदार आगे बढ़ता और ऐलान करता था। ये एक अजीम भेद है। देखिए, ये एक भेद है। क्यों भेद का ऐलान किया गया? 5वीं मोहर के खुलने के वक्त यहाँ क्यों कोई नहीं है? ये यहाँ है। देखें, उस रोया के मुताबिक जो आज खुदावंद यीशु ने सुबह सवेरे मुझे दी है, वो ये है कि मौजूदा दौर में कलीसियाई दौर का भेद पहले ही खत्म हो चुका है। मुखालफ मसीह का भेद इस वक्त खुल चुका है। मुखालफ मसीह अपनी आखिरी दौर में है, और हम इसको ऐसे जर्द घोड़े पर सवार पाते हैं जिसमें कई रंग मिले हुए हैं, और इसकी तमाम दौड़ तबाही की तरफ जाती है। हम नरसिंगों की आवाज में देखते हैं, और इसी तरह हम उनकी तालीम देते हैं। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ, मगर दोबारा अपने मजमून से हट जाऊंगा, और हम आगे बढ़ते हैं। उसने सवारी की, यही वजह है कि वहाँ पर कोई नहीं है। अब हमारे पास कुछ तहरीरी नहीं है, मगर हर बात के पीछे कुछ वजूहात होती हैं। अब आपको याद है कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। स्याही के छोटे कतरे को याद रखें। देखें, और अब आपने इसकी वजह तलाश करनी है। वहाँ पर कोई ना कोई वजह थी। वहाँ पर कोई जानदार नहीं था या कोई ताकत नहीं थी जो उस मोहर के खुलने का ऐलान करते, और ये सिर्फ खुदा ही जाहिर कर सकता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि तमाम चीजें उसी में हैं। लेकिन कोई वजह है कि वो जाहिर करता है, जैसा कि मैं समझता हूँ, वो सिर्फ मखलिसी की किताब के भेद की वजह है कि मुखालफ मसीह जहूर पजीर हुआ और उस वक्त कलीसिया ऊपर है, और ये बातें किसी भी तरह कलीसिया या द्वार में नहीं हुई। ठीक है, ये कलीसियाई दौर से दूर है। उस वक्त बिलाशुबा कलीसिया ऊपर है, क्योंकि मुकाशवा 4 बाप में कलीसिया ऊपर चली गई, और 19 बाप में वो उस वक्त तक वापस आती दिखाई नहीं देती जब तक उसका बादशाह उसके साथ वापस नहीं आता। लेकिन ये मोहरें यहाँ जाहिर करती हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, समझे। और अब इन मोहरों ने जाहिर कर दिया है कि कलीसियाई दौर का क्या होगा। अब देखें कि क्या होता है। अब उस सवार के 4 मराहिल बयान किए जा चुके हैं। इस वक्त मुखालफे मसीह की सवारी के 4 मराहिल बयान किए गए हैं, बस इसके मुतल्लिक कहने की मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। और सवारों की सवारी के वक्त वहाँ पर खुदावंद की 4 जिंदा मखलूक थी, और जैसा कि हम जानते हैं कि जानदार का मतलब है बाइबल के अस्तलाहात और मिसालों के मुताबिक ताकत, ताकत की अलामत है। अब इसको करीब से देखते हैं। बाइबल में चारों जानदार लोगों के दरमियान ताकत को जाहिर करते हैं। अब देखें, अगर हम तलाश करें, जैसा कि दानियल की किताब में, जब उसने देखा कि कोई कौम उठ खड़ी हुई और अलामत के तौर पर ये कोई रीछ था जो पसली थामे हुए उसकी हमायत में खड़ा था। फिर उसने एक और ताकत को उभरते देखा जो कि बकरा नुमा थी, वो कुछ जाहिर कर रही थी। और फिर उसने एक और ताकत को उभरते देखा और वो एक बहुत से सरों वाला चीता था, ये किसी मखसूस बादशाही को जाहिर कर रहा था। फिर उसने एक और को उभरते देखा, एक बड़ा शेर लंबे दांतों के साथ तमाम बचे खुचे को खा गया। वो मजमुई तौर पर मुख्तलिफ ताकतों को जाहिर करते हैं। एक नबुकत नजर की बादशाह थी और दूसरा एक किस्म का ख्वाब था। दानियल ने रोया देखी, नबुकत नजर ने ख्वाब देखा, लेकिन दानियल ने उसके ख्वाब की ताबीर की जो कि रोया के ऐन मुताबिक थी। आमीन। क्या बात है, क्या आप जानते हैं अभी क्या हुआ है? हमारे इस जगह को छोड़ने से पहले क्या होगा, क्या आप समझते हैं? क्यों 6 ख्वाब बिल्कुल रोया के साथ ऐन मुताबिक आए। आमीन, समझे। एक ख्वाब का तर्जमा किया जाए तो वो रोया है, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान फितरी तौर पर तैतुल शोर में ना जाग रहा हो जब वो इसको देखता है, और तब खुदावंद उसके तैतुल शोर के अंदर जाता है और उससे बातचीत करता है, जिसका उसने वादा भी किया है कि मैं आखिरी दिनों में ख्वाबों और रोयाओं के वसीला से लोगों के पास जाऊंगा, समझे। अब देखें, रोया वो होती है जब आप बिल्कुल जाग रहे होते हैं और कुछ चीज आश्कारा होती है, और आप खड़े वही बयान कर रहे होते हैं जो वाकया हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, और वगैरह वगैरह। देखें, अब ख्वाब वो होता है जो आप सोते हुए देखते हैं और आपके 5 हवास सुस्त हो जाते हैं, और आप अपने तैतुल शोर में होते हैं, आप कहीं भी हैं, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आप याद करते हैं कि मैं कहाँ था, और आप इसको तमाम जिंदगी याद रखते हैं, समझे। बस ये आपका तैतुल शोर है। फिर इसलिए देखें, जैसा कि कांग्रेसमैन अपशव कहा करता था, आप वो नहीं हो सकते जो आप है ही नहीं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, समझे। और अगर आप पदेशी एक नबी हैं, अब आप जरा गौर करें, ऐसा होने के लिए दोनों शाऊर का इकट्ठा होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि एक शाऊर 5 आवाज के साथ चुस्त हो और दूसरी तरफ जब आप सो रहे हो तो दूसरा बाहर हो, तो फिर आपके 5 हवास चुस्त नहीं है। लेकिन आप गौर करें, जब आप पैदा होते हैं तब ये दोनों बिल्कुल इकट्ठे होते हैं, आप सोते नहीं इस तरह से, आप एक से दूसरे एक की तरफ जाते हैं और आप सोते नहीं, क्योंकि तब ऐसी कैफियत नहीं होती कि आप सो सकें, इसलिए आप बजाते खुद ऐसा नहीं कर सकते। बस नेमते और बुलावे बनाए आलम से पेशतर खुदावंद की तरफ से है, नेमते और बुलावे खुदा की तरफ से है और बेतब्दील है, ये बाइबल कहती है, समझे। ये बनाए आलम से पेशतर ही मखसूस किए गए हैं, समझे। अब देखें, हमने दानियल में एक जानदार को देखा। इसका मतलब ये था कि एक ताकत जो कि लोगों के दरमियान उबर रही थी, ये ठीक है। और यहाँ पर योहन्ना की रोया में भी ये जाहिर करती है कि ये ताकतें थी जो कि कौमों की सूरत में चढ़ाई कर रही हैं, जैसे कि अमेरिका मुकाशवत 13 बाब में बड़े की मानित जाहिर हुआ। अगर आप इसमें फर्क जानना चाहते हैं, तो फिर आप कहेंगे ठीक है, ये तो कौमी ताकत की बात करता है, ये जानदार रूहानी ताकत को भी जाहिर करता है। क्या आप इसको जानते हैं? रिबका को देखें। जब इब्राहिम का नौकर अलीअज़र जब वो रिबका को लेने गया, तो वो उसको ऊंट पर चढ़ाकर ले गया, बिल्कुल उसी ऊंट पर जिसको उसने पानी पिलाया था। और वो ऊंट की सवारी करके अपने अनदेखे दुल्हा के पास गए जिसको उसने पानी पिलाया था। वही चीज उसे उसके मुस्तकबिल के घर और दुल्हा के पास ले गई। और यही बात आज भी है। देखें, वो बात जिसको कलीसिया पानी दे रही है, वो बीज है, और ये कलाम का बीज है, और ये कलाम है जो जिंदा है और हमें अपने अनदेखे दुल्हा के पास ले जाएगा। समझे? ये किस कदर कामिल बात है। इसहाक ने घर को छोड़ दिया और वो अपने घर से दूर खेतों में था जब रिबका ने उसे देखा। और कलीसिया हवा में उड़कर मसीह से मुलाकात करेगी और फिर वो उसको अपने बाप के घर ले जाएगा जहां मकान तैयार हैं। इसहाक बिल्कुल इसी तरह रिबका को लेकर गया। और देखें, ये पहली मुलाकात का प्यार था, ओ मेरे खुदाया। और वो उसको मिलने के लिए दौड़ कर गई। और इस तरह कलीसिया मसीह से हवा में मिलेगी और फिर हमेशा तक उसके साथ रहेगी। अब देखें, बाइबल की असलाह में ये जानदार ताकते हैं। गौर करें। अब मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें। मैं आपकी तवज्जो अब्लीस के उन 4 रंग बिरंगे जानदारों की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ जो आगे बढ़े। उसके 4 जानदार थे, सफेद घोड़ा, सुर्ख घोड़ा, स्याह घोड़ा। और इन तीनों रंगों को मिलाकर फिर एक कर दिया गया और एक जर्द घोड़ा तैयार कर दिया गया। और हमने देखा कि उनमें से हर एक का एक दायरा इख्तियार था जो एक कलीसिया की शक्ल इख्तियार कर गया। और बाद में वो नासिया में मुनज्जम हो गई, हकीकी पेंटिकोस्टल कलीसिया जिस पर रूह कुदस नाजिल हुआ था। और जब हमने नीचे आकर देखा कि मुखालिफ मसीह की रूह ने उसको खत्म करके उसकी जगह एक तंजीम बना ली और उस तंजीम ने कई बेटियों को जन्म दे दिया, अपनी ताकत को 3 मर्तबा तब्दील किया और फिर उसको एक ही ताकत बना दिया और एक जर्द घोड़ा तैयार किया, तब उसका नाम मौत रखा और आखिर तक उस पर सवारी की। ये बहुत सादा है जितना कि ये हो सकता है। अब आए गौर करें, उसको नाम दिया गया और उस पर सवारी की गई। खुदा के पास भी हर वक्त। अब देखें, जब मुखालिफ मसीह पहली मर्तबा जाहिर हुआ तो वो किस पर जाहिर हुआ? सफेद घोड़े पर। देखें, इतना मासूम जितना कि वो हो सकता था, बिल्कुल जैसे कि कलीसियाओं में तालीम पाई जाती है। वो यगानगत चाहते थे, आपके यगानगत यीशु मसीह है, लेकिन वो रफाकत चाहते थे। वो उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, वो रफाकत चाहते हैं। ठीक है, आपको इल्म है कि कलीसिया में छोटी छोटी टोलियां उठ खड़ी होंगी। पास्टर साहबान, आप लोग इसको जानते हैं। देखें, जैसा कि लोग कहते हैं, एक जैसे परों वाले परिंदे। लेकिन भाइयों, अगर हमने नए सिरे से पैदाइश हासिल की है तो फिर ये रोया गलत है। समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें, अगर हम अपने भाइयों में कोई खामी देखते हैं, तो आए हम सिर्फ उसको खुदावंत के जुर पेश करें और उसके लिए दुआ करें और उसे उस वक्त तक प्यार करें जब तक के उस भाई को खुदावंत की हुजूरी में वापस नहीं ले आते। समझे, यही सही तरीका है। दरअसल उस काम को करने का यही सही तरीका है। आप जानते हैं, यीशु ने कहा था उनमें कड़वे दाने होंगे, और यीशु ने कहा था मगर उनको मत उखाड़ो, मुबादा उनके साथ गेहूं भी उखड़ जाए। समझे, बस उनको साथ ही बढ़ने दो, जब तक वक्त ना आए तो वो खुद ही उनको छांटकर अलैदा अलैदा करेगा। समझे, अभी सबको इकट्ठा ही बढ़ने दो। अब गौर करें, जो ही जानदार बाहर गया तो मुखालफ मसीह जानदार के ऊपर सवारी करके गया। ये उसकी ताकत है। हो मेरे खुदाया, मुझे ये पसंद है। मैंने अभी अभी जोश महसूस करना शुरू कर दिया है, शायद तहरीक है। गौर करें, जब मुखालफ मसीह बल्कि हो वो मुकाशफात हैं जो उस आग के सतून की हजूरी में है, जो अब भी कमरे में मौजूद है, वो अब भी मौजूद है। ओ भाई, अगरचे मैं उसको बचपन ही से देख रहा हूँ, जब भी ये हमेशा मेरे करीब आता है तो ये मुझे होशियार कर देता है और अक्सर मुझे ऐसे ही लाशौरी की हालत में मुब्तला कर देता है कि आप कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत मुकद्दस है। गौर करें, जब मुखालफ मसीह अपने मखसूस काम के लिए चार बार जानदार पर सवारी करके आगे बढ़ता है तो खुदा ने मुकाबले के लिए एक एक जानदार को भेजा। देखें और गौर फरमाएं, क्योंकि हर मर्तबा उस जानदार ने अपने घोड़े पर सवारी की, मुखालफ मसीह ने अपने घोड़े पर सवारी की, यानी अपने जानदार पर सवार हुआ ताकि अपने काम का ऐलान करे, और खुदा ने भी अपना जानदार भेजा जो कि अपने नकाब में था, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए आया हूँ। अब देखें, कलाम फरमाता है कि जब दुश्मन तूफान की मानिंद अंदर दाखिल होता है तो पाक रूह ज्यादा ताकतवर होकर उसके मुकाबले के लिए आ जाता है, और पस जब भी दुश्मन मुखालफ मसीह की सूरत में आया तो खुदा ने उसके मुकाबले के लिए एक मखसूस ताकत को भेजा, और फिर जब वो दोबारा एक लाल घोड़े पर सवार होकर आता है, एक और रंग, एक और ताकत, एक और खिदमत के साथ बाहर आता है, तो खुदा दूसरे को उसका मुकाबला करने के लिए भेजता है ताकि अपनी कलीसिया को कायम रखे। जब तीसरा सवार भेजा तो खुदा ने दोबारा अपने तीसरे जानदार को कहा कि आए और ऐलान करे, और जब उसने अपना चौथा सवार भेजा, खुदा ने भी अपना चौथा जानदार भेजा। उसके बाद मुखालफ मसीह का इख्तिताम हो गया और उस वक्त के साथ ही कलीसिया के दौर का भी इख्तिताम हो गया। देखें, ओ अब हकीकत में ये कैसी अच्छी बात है। अब देखें, हम देखते हैं शैतान ने चार जानदार तब्दील किए, जिसका मतलब है कि उसने अपनी ताकत का इजहार दुनिया पर किस तरह किया और फिर किस तरह मौत के जर्द घोड़े पर उसका इख्तिताम हुआ। अब आए खुदा के जानदार की ताकतों को उसके मुकाबले में देखते हैं। खुदावंत का पहला जानदार जिसको उसने मुखालफ मसीह के मुकाबले के लिए भेजा, जब मुखालफ मसीह की रूह अभी सिर्फ तालीम फैला रही थी। अब याद रखें, मुखालफ मसीह ने जब पहली सवारी की तो वो तालीमी खिदमत थी। मुखालफ मसीह ने पहली सवारी तालीमी खिदमत के साथ की। अब देखें, जो उसके मुकाबले के लिए आ गया वो एक शेर बब्बर था, यहूदा के कबीले का बब्बर, जो के कलाम है। जब उसकी झूठी तालीम सामने आई तो सच्चा कलाम उसके मुकाबले के लिए आ गया। यही वजह है कि हमने अरिनियस और पॉलीकार्प और सेंट मार्टन जैसे साथी देखे। जब मुखालफ मसीह अपनी झूठी तालीम के साथ सवारी कर रहा था तो खुदावर ने अपनी तालीम यानी कलाम को भेजा, यहूदा के कबीले का शेर बब्बर, वो कलाम जो रूह कुदस के वसीले से जाहिर हुआ और रूह कुदस ने अपने आप को जाहिर किया जो कि खुद कलाम है। यही वजह थी कि इब्तदाई कलीसिया में मौजज़े और शिफा और रोयाएं और ताकत थी, क्योंकि ये जिंदा कलाम था जो यहूदा के शेर बब्बर की सूरत में मुकाबले के लिए निकला था। आमीन, क्या आप इसको समझ गए? मुखालफ मसीह वो अपनी ताकत को भेजता है और खुदा अपनी ताकत यानी कलाम को भेजता है। मुखालफ मसीह झूठी तालीम के साथ आता है जबकि सच्चाई का कलाम आकर उसका मुकाबला करता है। अब ये था पहला जानदार, और अब यही थी पहली कलीसिया यानी रसूली कलीसिया जो के उसका मुकाबला करने के लिए आई। अब देखें, दूसरा जानदार जो मुखालफ मसीह ने भेजा वो लाल घोड़ा था जिस पर उसने सवारी की, जिसका मतलब दुनिया से अमन और सुकून छीनकर जंग करना था। लेकिन दूसरा जो उसके मुकाबले के लिए गया वो जानदार बैल था। बैल का मतलब है मेहनत, मुशक्कत और बोझ उठाने वाला। और अगर हम सिर्फ एक मिनट के लिए रुक जाए, मुझे जरा यकीन कर लेने दे कि आप इसे समझते हैं। अब क्यों कर इस किस्म की चीज आपको थोड़ा चक्कर में डाल सकती है, मगर आए जरा थवातीरा की कलीसिया पर निगाह करें। आए अब हम यहाँ इस चीज को गौर से देखते हैं कि क्या थवातीरा की कलीसिया मेहनती और मुशक्ति थी। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोलों की मानित और पांव खालिस पीतल के हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देखें, अब तमाम कामों का जिक्र हो रहा है, समझे, क्योंकि ये वो एक है जो कि उसके साथ सवारी कर रहा था। और मैं तेरे कामों और मोहब्बत, देखें ये सब कुछ है, और ईमान और सबर और खिदमत को तो जानता हूँ, एक दफा फिर दोबारा, और कामों को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। देखें, इससे थवातीरा का जमाना जाहिर होता है, जब मुखालफ मसीह अच्छी तरह आबाद होने के बाद थवातीरा के दौर में दाखिल हुआ, तो ये छोटी सी कलीसिया उस वक्त सिवाय मेहनत मुशक्कत के कुछ नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात ये है, बैल एक कुर्बानी का जानदार है, समझे, उन्होंने अपनी जिंदगियां इतनी आजादी से दी जितनी के वो दे सकते थे, और तारीकी के 1000 साल दौर में दुनिया कैथोलिक निजाम की गिरफ्त में थी, और वो सीधे उसी रास्ते पर चलते रहे, ठीक है या नहीं, वो मौत की परवाह नहीं करते थे, अगरचे सामने मौत ही क्यों ना हो, वो कहते थे ठीक है, बहरहाल वो जाते थे और मर जाते थे, आखिर क्यों, ये उस दौर की रूह के सबब से था, यही वजह है कि वो लोग, यही वजह है कि आरिनियस, यही वजह है कि पॉलीकार्प, यूहन्ना, पालूस जैसे ताकतवर और अजीम अशकास उस चीज का मुकाबला करने के लिए वहाँ मौजूद थे। पालूस ने उसको देखा और उसने कहा, ए भाइयों, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद वो तमाम भेड़िये तुम में शामिल होकर तुमको अपनी तालीम से परागंदा करेंगे। उस छोटी सी मजबूत हस्ती, उस रसूल पर नजर करें जो वहाँ खड़ा था और जिसकी कमर कोड़े खा खा कर निशानों से भरी पड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो वहाँ से बहुत दूर देख सकता था, वो उस वस्त के आगे देख सकता था जिसको वो नूरी खला के 120 मिलियन नूरी सालों में देख सकते हैं, वो उसको अब्दियत के पैमाने से नाप सकता था। ये था उसका मकाम, उसने पेशनगोई की और कहा ये वो बातें हैं जो होने वाली हैं, और ये भी कहा कि ये आने वाले जमाने में होगा। अब गौर करें, वो वहाँ था, उसके बहुत अरसा बाद मुकद्दस यूहन्ना बहुत अरसा तक जिंदा रहा, और जब मुकद्दस यूहन्ना तमाम पाक रूह के हिस्सों को जो रूल कुदस से मुसल्ला थे और तमाम खतूत को इकट्ठा करके बाइबल में महफूज करने की कोशिश कर रहा था, तो रोमी बादशाहत ने उसे गिरफ्तार करके पिथमस के जजीरे में रख दिया। उसको पिथमस के जजीरे में असीर करके महज खुदावंत के कलाम की वजह से रखा गया था, और पॉलीकार्प तर्जमा में उसकी मदद करता था। एक दिन मैंने वो खत पढ़ा जो कि मरियम ने खुद पॉलीकार्प को लिखा था और मलामत की, उसे मलामत नहीं की बल्कि उसको सराहा कि वो एक दलेर आदमी है और उसने यीशु मसीह की तालीम को सीखा है और कबूल किया है, और वो खुदावंद की मर्जी से उसके यहाँ पैदा हुआ। मरियम का अपना लिखा हुआ खत जो कि उसने पॉलीकार्प को लिखा था। आपको मालूम है पॉलीकार्प को शेरों की गजा बनाया गया, नहीं बल्कि उसको जलाया गया। उनके ख्याल में शेर को खोलकर मैदान में लाने तक देर होने का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने हमाम, एक पुराने हमाम को तोड़कर लकड़ियों को जमा किया और उसे पकड़ा और मैदान में लाकर जला दिया। लेकिन इससे पेशतर जब वो सड़क पर सर झुकाए हुए चल रहा था तो एक रोमी अफसर ने उससे कहा कि तुम एक बुजुर्ग आदमी हो और काबिले एहतराम भी हो, तुम इस बात से इनकार क्यों नहीं कर देते। मगर वो सिर्फ आसमान की तरफ निगाहें लगाए हुए देखता रहा। फिर कहीं से आवाज आई, वो लोग ये नहीं समझ पाए कि ये आवाज कहाँ से आई थी, जिसने कहा, पॉलीकार्प मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्या बात है, क्यों? क्योंकि वो कलाम के साथ खड़ा था, और जब उसको जलाने के लिए लोगों ने उसके ऊपर लकड़ियाँ रखना शुरू की तो वहाँ एक आसमानी संगीत नीचे आ गया और कहीं से फरिश्तों के गाने बजाने की आवाजें आ रही थी, और उसने एक बार भी उन तंज करने वालों पर निगाह ना की। वो एक दलेर आदमी था, और ऐसे आदमी ही उसके हजूर खड़े रह सकते हैं, इसलिए कि हर दौर में शहीद होने वालों को खौफ और हराज का सामना करना पड़ा। लेकिन वो कैसे लोग थे? वो इल्हामी तहरीक और कुवत यानी खुदा के रूह के ताबे थे। उस कलीसिया को मत भूले। और आप टेप सुनने वाले भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आप उसका मुशाहिदा करें। इंसान कैसे उस कुवत के बरक्स जो खुदा ने उसे दी थी कोई काम कर सकता था। मैं इस बॉक्स को यहाँ पर जाहिर करने के लिए रख रहा हूँ। अगर खुदा ने उनके दरमियान अपना रूह भेजा तो सिर्फ यही एक वजह थी कि वो काम कर सके। वो पाक रूही जो उनके अंदर था काम करता था। अब हम आपको कलीसिया की तवारीख और मोहरों के खुलने और जिन ताकतों को भेजा गया उनके जरिए साबित करके दिखाएंगे। और देखेंगे कि कैसे कलीसिया उस मखसूसियत के ऐन मुताबिक अमल करती रही और इसके अलावा कुछ ना किया। अब देखें, पहला जानदार शेर बब्बर था जो गर्जा, जो कि खालिस बगैर अमेजिश के कलाम था। दूसरा तवातीरा में, जो कि एक बैल था और वो एक बोझ उठाने वाला जानदार था, मैं माजरा चाहता हूँ, और वो कुर्बानी का भी जानदार था। और क्या वो दर हकीकत नादार और छोटी कलीसिया नहीं थी? रोम, जिसने हजार साल तारीकी के दौर में अपने आप को कायम किया, और जो कोई भी रोमी कलीसिया का होने से इनकार करता था उसको फौरन कत्ल कर दिया जाता था, और उस कलीसिया को मशक्कत करनी पड़ी, जगह जगह सफर करना पड़ा। आप ममार हजरात, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, क्या आपको सलीब का निशान याद है? अब आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब तवज्जो दें, अब अगर आप गौर करें तो वो बाइबल को उस तंग हालत में भी जखीरा करके महफूज कर रहे थे, समझे? उन्हें एक दूसरे के दरमियान मेहनत करनी पड़ी। यहाँ है आप, यानी बैल का मसा, और जब ऐसा वक्त आया जैसा कि हमने पिछली रात इसको पढ़ा था, देखें, जब ये चीजें आगे बढ़ी तो कुर्बानी का वक्त आ गया और उन्हें उसके लिए जाना था। उसने कहा, तू तेल और मैं का नुकसान ना कर, बल्कि उन्होंने क्या किया, वो अपनी आजाद मर्जी से वहाँ चले गए और मौत को कबूल कर लिया। उन्होंने बिल्कुल परवाह ना की, क्योंकि उन दिनों कलीसिया पर कुर्बानी और मुशक्कत की रूह थी, और वो इतनी आजादी से चलकर जाते थे जितनी की उनकी बसात थी, खुदा के हकीकी रूह से मामूर, जो कि उस दौर के लिए था, और बहादुरों की तरह मौत को गले लगाकर कुर्बानी देते रहे। हजार हा हजार दफा, शायद 68 मिलियन रिकॉर्ड में शामिल है। बैल का मसा यानी कुर्बानी का जमाना। ओ मेरे खुदाया, क्या आप इस बात को समझ गए हैं? ठीक है, ये दुरुस्त। अब देखें, उस दौर में यानी उस तारीकी के हजार साला दौर में उस बड़ी ताकत का मुकाबला करने के लिए सिर्फ मुशक्कत और कुर्बानी हो सकती थी। अब देखें, तीसरा जानवर जो शैतान की तरफ से भेजा गया था वो एक स्याह रंग का घोड़ा था, समझे? अब देखें, दूसरी तरफ तीसरा जानदार या खुदा की तरफ से मुकाबला करने के लिए जो ताकत भेजी गई ताकि उस स्याह घोड़े की ताकत का मुकाबला करे, वो एक इंसान नुमा था जो चुस्त और चलाक था और खुदा की हिकमत से मामूर था। आप जानते हैं कि इंसान हर एक जानदार से ज्यादा जहीन है, समझे? इंसान ज्यादा जहीन है क्योंकि ये अक्सर अपने वजूद से बढ़कर चलाकी करता है, ये चलाक और शियार है, समझे? और अब आप उस दौर में यानी तारीकी के दौर में से उस तारीकी के दौर में से बाहर आ रहे हैं। अब इस तरफ देखें, जहां स्याह घोड़ा सवारी कर रहा था, जहां उन लोगों ने कुर्बानियां दे दी और सब बाकी काम सर अंजाम दे दिए, और सिर्फ दौलत बल्कि ओ आप जानते हैं ये कैसे हुआ था। अब देखें, अगली चीज जो मुकाबले के लिए आई वो एक जानदार था जिसका मुंह आदमी जैसा था, चुस्त, तलीम याफ्ता, अकलमंद, बेहतरीन और उस दौर की रूह से मामूर था। क्या आपने इस पर गौर किया? अब वो खुदा की अता करदा समझदारी और अकलमंदी के साथ उसका मुकाबला करने के लिए भेजा गया। ये असलाहकारी का दौर था। मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और इसी तरह दूसरे, समझे? वो असलाहकार थे। ज्वांगली और दूसरे तमाम, नॉक्स, कैल्वन और बाकी दूसरे बाहर आए। ये होशियारी और अकलमंदी थी। अब आप देखें, बिल्कुल तारीकी के दौर से असलाह के दौर तक यही एक तरीका है। देखें कि ये इंसान की होशियारी थी। आप अपनी खिड़कियों को जरा सा नीचे की तरफ कर दें, क्योंकि मुझे यकीन है शायद यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। जी हाँ, इसलिए आप अपनी खिड़कियों को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दें, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर यहाँ मुनादी करते हुए मैं इतनी गर्मी महसूस कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है आप भी वहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपने गौर किया, ये इंसान की अकलमंदी थी। क्या अब आप समझ गए हैं? तीसरा जानवर जो शैतान ने भेजा वो भी होशियार था। देखें, एक दिनार के इव्ज गंदुम का एक शेर और एक दिनार के इव्ज जौ के तीन शेर, समझे? ओ मेरे खुदाया, देखें, दौलत इकट्ठी करने की स्कीम, ये चलाकी दुनिया का सोना और दौलत जमा करने के लिए थी ताकि इसको शामिल किया जाए, वो बिल्कुल पूरा हुआ। उन्होंने दुआ की कीमत वसूल करना शुरू कर दी और एक जगह बताई जिसको वो बरसक कहते थे। वो अपने अबाऊ अजदाद को वहाँ से निकालने के लिए दुआ करवाते थे, और हो आपको अपने तमाम काम और चीजें और जायदाद उनके हवाले करनी पड़ती थी। कलीसिया और हुकूमत एक ही बात थी। इस तरह कलीसिया आपकी तमाम जायदादें ले लेती थी। और क्या आपने ऐसे चंद मुबलगीन नहीं देखे जो आज भी वही लबादा पहने हुए हैं, जो बूढ़े लोगों की पेंशन बड़े तरीके से छीनते हैं और उनके घरों के मुआयदे कर लेते हैं? क्यों भाई, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, समझे? लेकिन अब मैं इस जगह रुकता हूँ। मुझे पीछे देखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उन अशखास पर तवज्जो दें, ये उन पर मुनसर है, ये उन पर मुनसर है। इसका ताल्लुक बिल्कुल मुझसे नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ इस बात का जिम्मेदार हूँ। अब गौर करें, जानदार जो के मुकाबले के लिए आया वो एक आदमी था। हम तमाम इस जानदार को जानते हैं जो के आदमी की सूरत में था, उस ताकत को थामे हुए था जो के फहीम था, और वो पाक ईशा की रोटी मार्टिन लूथर के हाथ में थी जब वो उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। वो कहते थे ये यीशु मसीह का खून है, ये यीशु मसीह का बदन है, और लूथर ने उसको नीचे फेंक दिया और कहा ये रोटी और मैं है, ये मसीह का बदन नहीं, क्योंकि वो आसमान पर उठा लिया गया है और खुदा के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत कर रहा है। देखें, ये अकलमंदी है। और फिर आदमी को देखें, स्वांगली और कैलवन के काफी अरसे बाद जब वेस्ली आया तो उन्होंने कलीसिया को एक मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि सिर्फ तहफ्फुज चाहिए, इसके अलावा उन्हें मजीद कोई बेदारी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वो तो होना ही है। बस ये सारी बात थी, और उन्होंने जैसे चाहा जिंदगी गुजारी, क्योंकि लूथरन कलीसिया और एंग्लिकन कलीसिया बिगड़ी हुई थी। ओ मेरे खुदाया, पूरे का पूरा मुल्क बिगड़ा हुआ था, बिल्कुल जिस तरह आज बिगड़ा हुआ है। वो कलीसियाएं बिगड़ी हुई थी, क्योंकि जब किंग हेनरी हष्टम इंग्लैंड में आया और उसके बाद उसकी बेटी ब्लडी मैरी आई, तब ये तमाम चीजें वाकया हुई, और उस वक्त कलीसिया मुकम्मल तौर पर बदउनवानी और दंगा फसाद का शिकार थी। बतेरे मसीह होने का दावा करते थे, मगर फिर भी चार या पांच बीवियों के साथ रहते थे, और जो कुछ वो करना चाहते थे वही कुछ करते थे, और इस तरह वो आलूदगी को जारी रखे हुए थे। जॉन वेस्ली कलाम का मुतालिया कर रहा था और इस बात पर गौर कर रहा था, तो उस पर ये बात जाहिर हो गई, यीशु मसीह का खून ईमानदारों को मखलसी देता है और उन्हें ऐसा करना रवा नहीं। तब उसने क्या किया? तब वो एक सलाहकार बनकर सामने आ गया। उसने लूथर की तरह अपने दौर में दुनिया को बचाया। देखें, वो क्या था? वो एक आदमी था जो उस जानदार की ताकत के साथ बाहर आया। उसने इंसान को ये चीज समझने की अकल बख्शी कि ये चीजें गलत है, ये यीशु मसीह का खून नहीं है, ये यीशु मसीह का बदन नहीं है, ये बदन की तशबीह है, समझे? और ये बात आज भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के दरमियान झगड़े का सबब है। सिर्फ यही मसला था जिस पर वो आज तक मुतहिद नहीं हो सके, इसके सिवा दूसरी तमाम बातों पर इकट्ठे हो सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए काउंसलें भी बिठाई। अब गौर करें, मगर फिर भी ये इस बात पर मुतहिद नहीं हो सके। देखें, उसने कहा क्या ये खून है, और वो कहते हैं कि ये असल खून है, क्योंकि प्रीस्ट के पास ताकत है कि वो इस रोटी को मसीह के बदन में तब्दील कर सकता है। आप जानते हैं कि कलीसिया में ये थोड़ी सी रिहायश गाह है, यही वजह है कि वो निशानात बनाते हैं, और जिस तरह गैर कौम के लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं इसी तरह ये भी करते हैं। आप जानते हैं, ये अपने आप को झुकाते हैं और अपनी टोपियों को उतारते हैं और वगैरह वगैरह। ये उस इमारत की खातिर नहीं करते, बल्कि ये उस रोटी की खातिर करते हैं जो उस रिहायशगाह में है। गौर करें, शैतान ने इनको किस तरह होशियारी से खींचा है। लेकिन देखें, गौर करें, उस वक्त बनीनो इंसान पर खुदावन ने अकल की रूह भेजी ताकि वो समझ सके कि वो सब कुछ गलत था। अब ये तीसरे हैवान के मुकाबले के लिए आई थी जिस पर वो सवारी कर रहा था, जिसने कलीसिया को इस कदर खराब कर दिया था, और ये होलनाक बात थी। इस्लाहकारों ने उन्होंने इस्लाही दौर में क्या किया? वो कलीसिया को नापसंदीदा बुत परस्ती की रस्मों से वापस खुदा की तरफ लाए, समझे? इसलिए जानदार इंसानी अकल की सूरत में आगे बढ़ा। अब आए और एक मिनट के लिए तीसरी आयत को या मुकाशवा 3:2 को पढ़ें। अब मैंने कुछ वजूहात की बिना पर यहाँ निशान लगाया हुआ है। अब ये बात यहाँ मुकाशवा 3:2 के लूथरन दौर और सलाहकारों के दौर में आती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को मुनज्जम कर लिया। जो ही लूथर ने अपनी कलीसिया का आगाज किया तो उन्होंने अपने आप को मुनज्जम किया, ठीक है? और यही कुछ वेस्ली ने किया, यही चीज 35 वालों ने की, बिल्कुल इसी तरह वो भी मुनज्जम हो गए। जिस निजाम में से वो निकल कर आए थे दोबारा उसी में वापस चले गए, समझे। अब मुकाशवा की इस बात पर गौर करें जो सरदीस की कलीसिया से गुफ्तगू करते हुए कहता है कि सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख, बेशक पहली आयत देखें, समझे, ठीक है। जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं मजबूत कर, बस यही कलाम है जो आपको दिया गया है। देखे वो चीजें जो बाकी हैं, जो मरने को तैयार हैं, बस वो वापस उस तंजीम में जाने के लिए तैयार हैं, यानी बिल्कुल उसी कैथोलिक कलीसिया में जिसमें से वो निकले थे, समझे। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया, ये बात है, ये बात। वो दोबारा वापिस उसी में चले जाते हैं। क्या आप देख नहीं सकते कि क्यों ये तंजीमी निजाम गलत है? किसने इसको शुरू किया? क्या खुदा ने, क्या रसूलों ने? ये रोमन कैथोलिक कलीसिया ने शुरू किया था। अगर कोई भी मूर्ख इससे इख्तलाफ करता है तो उसे करने दें, वो यहाँ तक नहीं पहुँचा। वो कहते हैं कि वो माँ कलीसिया है और वो वाकई है, मगर उन्होंने उस निजाम को तश्कील दिया है और ये तरीका अपनाया है कि उसका सरबरा आदमी हो। हम एक आदमी को नहीं लेते जैसा कि वो करते हैं, बल्कि हम आदमियों के एक पूरी काउंसिल को लेते हैं और उन्हें इकट्ठा बिठाते हैं। तब आप यकीनन उलझन में पड़ जाते हैं, ठीक है। कैसे एक काउंसिल? बहरहाल ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम सोचते हैं कि जमहूरियत दुरुस्त है। मैं भी इस पर यकीन रखता हूँ, मगर ये कभी भी सही तरीके कार पर काम नहीं कर सकी, ये नहीं कर सकी। बहुत बड़े आवारा गर्द झुंड के साथ अगर इसे चलाने की कोशिश करें तो आप कैसे इसे दुनिया में दुरुस्त तरीके से चला सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, गौर करें। मगर हकीकत में खुदा प्रस्त बादशाह होना चाहिए। अब तवज्जो दें, तीसरा जानदार आदमी की अकलमंदी थी। ये इन असलाहकारों को जाहिर करती है जो भेजे गए। वो बुत को लेते हैं, वो कहते हैं ये रोटी है, ये मैं है। देखें, मुखालफ मसीह अभी तक अपने पास कुछ मसीही अलामतें रखता है, उसे रखनी पड़ती हैं क्योंकि वो मुखालिफ है, आप समझे। और फिर उसे किसी चीज के खिलाफ होना ही है। अब अगर वो सबके साथ आए और कहे ओ मैं बुद्धा हूँ, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सब ऐसा करते हैं क्योंकि बुत प्रस्त भी इसी तरह आगाज करते हैं। मगर मुखालफ मसीह चलाक है, उसके पास तमाम किस्म की अशिया हैं जो मसीहत को जाहिर करती हैं। उसने सिर्फ उन चीजों को थामा हुआ है जो हकीकी तालीम के खिलाफ हैं। देखें, और यही चीज उसको मुखालफ मसीह बनाती है, समझे। बस असलाहकार जब जानदार एक आदमी की शक्ल में उसका मुकाबला करने के लिए गया, अब सामीन इस बात को मत भूले, इसको मत भूले, समझे। इसको अपनी तमाम जिंदगी के अयाम में याद रखें। देखें, ये जानदार दुरुस्त है, ये खुदावंद यूं फरमाता है, समझे। गौर करें, बुत प्रस्ती आदमी की सूरत में जानदार खुदावंद की उस ताकत और अकलमंदी से गया जो खुदा ने उसे अता फरमाई थी, और कलीसिया को वापस बुत प्रस्ती से खुदा की तरफ वापस लाया। लेकिन इसमें हम इस कलीसियाई दौर में देखते हैं जब उन्होंने मुनज्जम होना शुरू किया, वही काम करने की कोशिश की जो उन्होंने इब्तदा में किए, जो रोम ने किए। अब वो इस कलीसिया की बेटियां बनने के लिए जा रही थी और वो कहता है, कहा कि अब तुम, मैंने तुम्हें कामिल नहीं पाया और तेरे पास जो छोटी सी ताकत है उसे मजबूत कर। अब उन्हें खबरदार करते हुए उसे सुने, दोबारा मुकाशवा 3:3 में आए पढ़े, ठीक है। मुझे यकीन है चंद मिनट पहले मुझे ये मिला था। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, उस पर कायम रह और तवज्जो कर। बल्कि दूसरे लफ्जों में याद करो कि तुम उस जैसी बदकारी से निकले हो, समझे। और यहाँ देखें, अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की मानिंद आ जाऊंगा, समझे। और तुझे मालूम, और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। वो नीचे उतर कर तेरे चिरागदान को हटा देगा, समझे। बस ये बात है, ये चिरागदान क्या है? ये कलीसिया की रोशनी है। और वो बिल्कुल उसी बुत प्रस्ती और तारीख निजाम में चली गई जहाँ से वो निकली थी, और वो आज भी उसमें है। जो दयानतदार लोग थे वो आज भी सोच रहे हैं कि वो सच्ची है, जबकि ये भी कैथोलिक जैसे ही है, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक कलीसिया का मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये कलाम के मुताबिक बिल्कुल एक दूसरे जैसे हैं। ये इंसानी अकल है, गौर करें। हो, मैं इसको किस कदर प्यार करता हूँ। अब उसकी सुने, वो उन्हें खबरदार करता है। अब हम क्या आप इससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं? अब अगर आप मुत्तफिक नहीं हैं, तो मुझे सवाल लिखकर भेजें कि उन जानदारों को हर दौर में उसी तरह शनाख्त किया गया जिस तरह उनकी शनाख्त यहाँ बाइबल कराती है। हकीकत में ये काम है जो उन्होंने वहाँ किया, क्योंकि तारीख बताती है उन्होंने ये किया, और हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। और यहाँ वो जानदार हैं। मैं इससे पेशतर नहीं जानता था। मैं सिर्फ वहाँ बैठा था और मैं उसको ऊपर हरकत करते हुए देख सकता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, समझे? और ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये बाइबल के ऐन मुताबिक है। फिर आप किस तरह और कुछ कह सकते हैं मां स्वाय इसके कि ये सच है। तो जो दे, अब चौथा जानदार जो मुखालफ मसीह के मुकाबले के लिए भेजा गया था, यानी आखिरी जानदार, क्या आप तैयार हैं? मुखालफ मसीह जो खुदा की हकीकी तालीम के खिलाफ था, मुखालफ मसीह के मुकाबले के लिए जो चौथा जानदार या चौथी ताकत भेजी गई थी, वो उकाब था। देखें, चौथा जानदार एक उकाब था। अब देखें, आप जिन्होंने जमानों का मुतालिया किया है या कलाम का मुतालिया किया है, ये उकाबी जमाना है, और बाइबल में आखिरी जमाना उकाबी जमाना है, और खुदा अपने अंबिया को उकाबों से तशबीह देता है, समझे? अब गौर करें, अब आखिरी जमाना उकाबी जमाना है, जो के कलाम की सच्चाई को जाहिर करने वाला है, समझे? इससे पेशतर कि खुदा ने कोई भी कदम उठाया, जिस तरह कि उसने नूह के जमाने में किया, उसने पहले एक उकाब को भेजा। जब उसने इसराइल को निकाला और फिरौन की फौज जाने के लिए खड़ी थी, तो उसने एक उकाब को भेजा। हमेशा उसने इख्तिताम पर एक उकाब को भेजा, और यहाँ वो फिर एक उकाब को भेजता है। ये कलाम के ऐन मुताबिक है। बस आप किस तरह इसको कोई और चीज बना सकते हैं? उसने उकाब को भेजा क्यों? ताकि सच्चाई को जाहिर करे जो जमानों से जवाल पजीर थी। बस ये कैसे जाहिर हो सकता था कि दुनिया में कोई बैल था, या कोई आदमी था, या कोई जानदार सवारी कर रहा था? ये कैसे जाहिर हो सकता था जब तक उकाब ना आता? उनका अपना अपना एक मुकाम था। वो खुदा की तरफ से भेजे हुए जानदार थे, बिल्कुल जिस तरह कोई भी और हो सकता है। शेर जो कि बिल्कुल हकीकी था, जिसका मुकाबला करने के लिए मुखालफ मसीह आया, और जब उसने एक और सवार को खड़ा किया, तो उसने एक और ताकत को उसका मुकाबला करने के लिए भेजा। तब उसने एक और सवार को भेजा, तो उसने भी एक और ताकत को उसका मुकाबला करने के लिए भेजा, और फिर आखिरी ताकत की सूरत में उसने एक उकाब को भेजा, ताकि वो बच्चों को बहाल करके उस हकीकी ईमान की तरफ वापस लाए जो कि उनके वालिदों का था। ये उकाबी जमाना है। फिर आपने गौर किया, कोई और जानदार बाकी नहीं है, ये तमाम हो चुका है, और ये इख्तिताम है। अब अगर आप मुकाशफा 10:1-7 को निकालें, तो मैं इसका हवाला दे रहा हूँ। देखें, याद रखें, आखिरी जमाने के पैगंबर के वक्त क्या होगा? खुदा के तमाम पोशीदा बेद अया किए जाएंगे उकाब के वक्त में। आमीन। अब आपने देखा कि चार जानदारों ने सवारी की, ये कामिल तौर पर दुरुस्त है। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? और अब यहाँ हर एक जमाना है, और हर एक के पीछे एक ताकत ने सवारी की, और यहाँ कलामे मुकद्दस बयान करता है कि दुश्मन के सवार ने क्या किया। ये इन मोहरों में अयां हो चुका है, और ये भी अयां हो चुका है कि हर एक जानदार ताकत है जो खुदा ने मुकाबले के लिए भेजी, उसने कामिल तौर पर उकाब के जमाने तक अपना हदफ पूरा किया। अब अगर ये आखिरी जमाना है, तो ठीक है, एक उकाब आएगा और मुकम्मल तौर पर इस हदफ को पूरा करेगा। अब याद रखें, अब शेर के जमाने में जब हकीकी कलाम आया, तो उनमें से कुछ ही ने उस शेर को सुना। जब बैल अपने जमाने में आया, तो लोगों की बिल्कुल छोटी सी तादाद ने उसे कबूल किया, और फिर जब इंसानी जमाना आया, तो उसने लोगों के दरमियान खिदमत की, और आपने देखा कि वो अकलमंद और दानिशमंद था। उसने एक छोटे ग्रोह को बाहर निकाला, और फिर उन्होंने क्या किया? शैतान ने ये सब देखा, फिर उसने उन्हें वापस वहीं धकेला और उनके साथ शादी कर दी। और याद रखें, जब आखिर में हुकाब आता है तो फिर दोबारा लोग 100 में से 1% ही सुनेंगे। ये उकाब का जमाना है, याद रखें। ये बाकी तमाम सवार थे और यस्सु ने भी पेशनगोई की। उसने अपनी आमद में जल्दी ना की, वरना ऊपर उठाए जाने के लिए कोई भी ना होता। क्या ये कलाम है बहनों और भाइयों? हमने अपने आप को जांचा है कि हम इस वक्त कहाँ हैं। महसूस करें हम इस वक्त कहाँ हैं। ए खुदा, मैं इतना खुश हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। ये महज मैं ही हूँ जो इस जगह खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं आपके दरमियान हूँ। देखें, मैं और मैं हूँ, ये मेरा एक खानदान है। आप मेरे बहन भाई हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। आसमानी बाप इतना मेहरबान है कि वो नीचे आ गया और उसने इन चीजों को अपने कलाम के जरिए जाहिर किया और रोयाओं को पिछले 30 सालों से साबित कर रहा है कि ये सच है। हम यहाँ हैं और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यही सब कुछ है। साइंसी तहकीक ने इसको साबित कर दिया है, कलाम की पाकीजगी ने इसको साबित कर दिया है और हम यहाँ हैं। और ये मुकाशफा खुदा की तरफ से आता है और ये सच्चाई है। क्या आपने कुछ हासिल किया है? मुझे हैरत होती अगर आप इसे ध्यान से ना सुनते। देखें जी जनाब, अब मुझे जरूरत नहीं कि इसके मुतालिक इतवार को मजीद बयान करूं। गौर करें, तवज्जो करें, अच्छी बात है। अब देखें, अब जरा ध्यान दें। और उस वक्त के मुताबिक जब वो पुरानी दुनिया को छुड़ाना चाहता था तो उसने उकाब को भेजा, और उस वक्त जब वो इसराइल को छुड़ाना चाहता था उसने उकाब को भेजा। क्या आप उस पर ईमान रखते हैं? अता के जब यूहन्ना पैतमस के जजीरे में था तो ये पैगाम इतना ठोस था कि उसने फरिश्ते की बात का भी यकीन ना किया। आप जानते हैं कि फरिश्ता एक पैगाम रसा होता है, और क्या आप ये भी जानते हैं कि पैगाम रसा एक नबी होता है? क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? आए इस बात को साबित करें। आए मुकाशवा 22 में देखते हैं। अगरचे ये एक उकाब था, जी हाँ, देखें, वो यकीनन वो फरिश्ता था, वो पैगाम रसा था, लेकिन वो एक नबी था जिसने उस पर मुकाशवे की किताब के तमाम भेद खोले। मुकाशवा 22वें बाप की 19वीं आयत, मुझे यकीन है ये बिल्कुल दुरुस्त है। 22:19, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नहीं 22:9 ही है, मैं भी 22:9 को देख रहा था, ये दुरुस्त है। ओ हाँ, यहाँ लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, क्योंकि मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों का हम खिदमत हूँ। देखें यूहन्ना ने यहाँ क्या देखा, मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को देखता और सुनता हूँ। अब वो इसको समेट रहा है, ये आखिरी बाब है। और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ते ने मुझे ये बातें दिखाई मैं उसके पांव पर सजदा करने को गिरा, और उस फरिश्ते ने, देखें, उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर। कोई हकीकी नबी अपनी परस्तिश नहीं करवाता, या कोई भी पैगंबर, समझे, ये वाहिद खुदा के लिए है। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ, खुदा ही को सजदा कर। समझे, अब देखें किताब किस कदर अहम थी, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। गौर करें, और जब खुदा का कलाम नाजिल हुआ तो ये नबी के जरिए नाजिल हुआ, क्योंकि वही एक है जिसके पास खुदा का कलाम आता है। मैं तवक्को करता हूँ कि यहाँ बॉक्स में मुझे इसके मुतालिक कोई सवाल नहीं मिलेगा। आप जानते हैं, मैंने सोचा था कि मैं जरा इस पर कुछ बोलूँगा, मगर मैंने महसूस किया कि वहाँ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, आप जानते हैं, मैंने सोचा था कि मैं इसको बयान करूँगा। देखें, खुदा के मुँह का हर लफ्ज पेश किया गया है। बाइबल अपने निजाम को हर गिज तब्दील नहीं करती, ये यकसा है, और ये कलाम हम तक नबी के वसीले पहुँचता है जिसकी आमद के हम मुंतजिर हैं। अब तवज्जो दें, मुकाशफा 10:1-7 है। अब आए 9वीं आयत को दोबारा पढ़ते हैं। अब हमने हम अब इससे पेशतर कि इस आयत को पढ़ें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम मोरों को खत्म करें, क्या आप इसको अच्छी तरह समझ गए हैं? अब याद रखें, उकाब के बाद मजीद कोई ताकत नहीं है जो आए, समझे, कोई भी नहीं। ہر مرتبہ جب مخالف مسیح نے کوئی طاقت بھیجی تو خدا نے بھی اپنی طاقت بھیجی، مخالف مسیح نے کوئی دوسری طاقت بھیجی تو خدا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اور بھیجا، پھر اس نے ایک اور طاقت کو بھیجا تو خدا نے بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اور بھیجا، سمجھے؟ اور جب اس نے عقاب کو بھیجا تو وہ اس کا کلام تھا جیسے پہلے آغاز میں تھا۔ اب دیکھیں، کیا وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس پر ایلیا کی روح کا مسا ہوگا؟ بے شک وہ ایلیا نہیں ہوگا، یہ اس کی ماند ایک آدمی ہوگا جو آئے گا، اور اس کی خدمت یہی ہوگی کہ وہ تنظیموں کے تروڑ مروڑ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بحال کرے اور ان کو واپس والدوں کے حقیقی ایمان کی طرف لائے۔ اب دیکھیں، اگر یہ بائبل کے عین مطابق نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہوگا۔ میں اس کے متعلق مزید کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہی کچھ ہے، آپ یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ سچائی ہے۔ اگر آپ اس میں سے کچھ لے کر اس کو تروڑ مروڑ دیں، دیکھیں، تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ایسے ہی ہے۔ اب توجہ دیں، نویں عہد میں چلتے ہیں، روحیں قربان گاہ کے نیچے ہیں۔ اب یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے ساتھ کچھ حقیقی اختلاف ہوں گے، لیکن ایک منٹ کے لیے اس پر غور کریں اور پھر دیکھیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، مگر یہ اس طرح نہیں ہے۔ میں نے بھی ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ قربان گاہ کے نیچے ابتدائی کلیسیا کے شہیدوں کی روحیں ہیں، جو مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر اوریا سمتھ اور باقی سب نے بھی یہی کہا ہے۔ دیکھیں، مگر میں خود بھی یہی سوچتا تھا، لیکن جب پاک روح نے مجھے رویا دی تو ایسا نہیں تھا، اور یہ روحیں وہ نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے، ٹھیک ہے، اب مجھے اس کے متعلق معلوم نہیں۔ خیر، اب ایک منٹ کے لیے دیکھیں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ روحیں کسی بھی طرح دلہن میں سے نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں قربان گاہ کے نیچے جو روحیں ہیں وہ دلہن کا حصہ ہیں، وہ چلا رہی ہیں، کب تک اے خداوند، کب تک؟ مجھے اسے دوبارہ پڑھنے دیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب اور گواہی پر قائم رہنے کے سبب مارے گئے تھے۔ دیکھیں، خدا کے کلام کے سبب اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث، اب اس جگہ سے نہ ہلیں، ایک منٹ کے لیے دیکھیں۔ اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی، اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک، دیکھیں، انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا، اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اب ان کے لیے اس وقت اگر آپ غور کریں تو پانچویں مہر کھل گئی ہے۔ دیکھیں، کلیسیا جا چکی ہے، لہذا قربان کا کے نیچے ابتدائی کلیسیا کی روحیں نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں، اب مہربانی سے اگر آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے تو اب اس پر توجہ دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی حقیقت کو قریب سے جانیں، اور آپ کے پاس کاغذ اور دوسری چیزیں لکھنے کے لیے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ دیں۔ اب دیکھیں، یہ روحیں ان کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ راست باز شہیدوں اور ایماندار لوگوں کی روحیں کلیسیا یعنی دلہن کی صورت میں اوپر چلی گئی ہیں، اس لیے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں نہیں ہیں، وہ دلہا کے ساتھ جلال میں ہیں۔ اب دیکھیں، کیونکہ وہ مکاشوہ چار باب میں آمد ثانی میں جا چکے ہیں، وہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ پھر اب دیکھیں، یہ روحیں کون ہیں؟ یہ ایک اگلی بات ہے۔ اگر یہ ابتدائی کلیسیا نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ یہ اسرائیل ہے جس کو بطور قوم نجات ملے گی، وہ جو پہلے سے مقرر شدہ ہیں۔ یہ اسرائیل ہے، یہ بذات خود اسرائیل ہے۔ آپ کہتے ہیں، ہو، ایک منٹ کے لیے انتظار کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتے، ہو، جی ہاں، وہ بچائے جائیں گے، آئیں یہاں پر ہم ان کا توہین کرتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں، میرے پاس کلام سے چار یا پانچ حوالے ہیں، میں ایک کو لیتا ہوں۔ آئیں ہم صرف ایک منٹ کے لیے رومیو کو لیں کہ آیا یہ وہی ہیں۔ آئیں رومیو کی کتاب کو کھولیں اور رومیو کے گیارہویں باب کو دیکھیں۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے، صرف اس کو پڑھیں اور پھر اس پر غور کریں۔ رومیو گیارہویں باب کی پچیسویں اور چھبیسویں آیت۔ اب سنیں کہ پولس یہاں کیا بیان کرتا ہے۔ और पौलुस कहता है अगर कोई शख्स खा वो फरिश्ता ही क्यों ना हो कोई दूसरी खुशखबरी दे क्या तो वो मलाउन हो। देखें,
फॉर आई वुड नॉट ब्रदरन दैट यू शुड बी इग्नोरेंट ऑफ द मिस्ट्री।
ए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अकलमंद समझ लो, ये रहे आप। इसलिए मैं नहीं चाहता तुम इस भेद से नावाकिफ रहो। देखें कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। आखिरी गैर कौम की दुल्हन अंदर लाई जाए और दुल्हन की खातिर इसराइल पर अंधापन लाया गया। और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सायून से निकलेगा और बेदीनी को यकूब से दफा करेगा। ठीक है, अब ये इसराइली हैं जो कुर्बानगाह के नीचे हैं। गौर करें, इसराइल को सिर्फ इस मकसद के लिए अंधा किया गया था कि हम निजात पाएं। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? अब उनको किसने अंधा किया था? खुदा ने अपने ही बच्चों को अंधा किया। इसमें कोई हैरत नहीं कि यीशु सलीब के पास खड़ा था और यहूदी उसके खून के लिए चला रहे थे। वो उसके अपने बच्चे थे और वो कलाम था, बल्कि वो खुद कलाम था। और ये वो जानता था कि वो लोग खुशी से उसे कबूल कर लेंगे और इसी सबब से उसने उनको अंधा कर दिया ताकि वो उसको पहचान ना सके। वो इतनी हलीमी से आया कि उन्होंने उसे कबूल ना किया। वो इससे अंधे थे, समझे? कलाम कहता है कि वो ऐसा करेंगे और उसने उन्हें अंधा कर दिया। उसने उनको अंधा कर दिया। यीशु ने उन पर इतना तरस खाया कि उसने कह दिया, ए बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। समझे? वो बिल्कुल अंधे किए गए थे। पौलुस ने कहा उनको एक मकसद के लिए अंधा किया गया था, यानी हमारे लिए। अब तवज्जो दें। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस हकीकत को करीब से जानें। उनको जामे दिए गए, उनके पास वो नहीं थे। उनमें से हर एक को जामे, सफेद जामे दिए गए। अब मुकद्दसीन के पास तो पहले ही थे, लेकिन उन्होंने यहाँ हासिल किए, लेकिन उनको वहाँ पर जामे दिए गए और मुकद्दसीन के पास तो पहले ही थे और वो चले गए थे। समझे? देखें, उनके पास मौका नहीं था क्योंकि खुदा ने उनको सख्त कर दिया था। उनके अपने ही बाप ने उनको अंधा कर दिया था ताकि खुदा का वो वादा पूरे जलाल के साथ मुकम्मल हो, ताकि दुल्हन गैर अकवाम से ली जाए। क्या ये ठीक है? आए हम यहाँ यूसुफ की खूबसूरत मिसाल देखें। यूसुफ जो पाकरू से मामूर आदमी था, यानी उकाब था, वो अपने भाइयों में पैदा हुआ, बिल्कुल जिस तरह हकीकी कलीसिया दूसरी कलीसियाओं के दरमियान पैदा होती है। और वो ख्वाबों की ताबीर करता था और रोया देखता था, मगर बाकी उससे नफरत करते थे, मगर उसका बाप उससे मोहब्बत करता था। अब यहाँ देखें कि उसके भाइयों ने उसे बेदखल कर दिया था, ना कि उसके बाप ने, उसके भाइयों ने उसे बेदखल कर दिया और चांदी के तकरीबन 30 सिक्कों के इवज उसे फरोख्त कर दिया। उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया और अपनी दानिश में उसे हलाक कर दिया। उसको वहाँ से निकाला और फराउन का दस्ते रास्त बना दिया गया। और चूंकि उसके भाइयों ने उसे अपने में से बेदखल कर दिया था, देखें, उसको गैर कौम की दुल्हन दी गई, ना के अपने लोगों में से। और वहाँ से मुनसी और इफ्राहिम को लिया, जिन्हें इसराइल में शुमार किया गया, जैसा कि इसराइल ने उन्हें बरकत दी, अपने हाथों को बड़े से मोड़कर छोटे पर रख दिया, और इस तरह बरकत को मोड़कर यहूदियों से वापस और यहूदियों से मोड़कर गैर अकवाम को बरकत दे दी। समझे? अपने हाथों को फेर कर छोटे बेटे पर, जो कि छोटी कलीसिया की मिसाल है, रखा। माँ कलीसिया सूरज में खड़ी थी, उसने इस बच्चे को जन्म दिया था। और गौर करें कि इसराइल ने उस बच्चे को हासिल करने के लिए अपने हाथों को फेर दिया, और यूसुफ, वो दोनों बच्चे गैर कौम की माँ से थे। इसराइली दुल्हन से या पुराने यहूदियों से हाथ फेर कर मसीहों पर रूल कदूस के जरिए इसराइल का हाथ रखा गया। उसने कहा, खुदा ने मेरे हाथों को तब्दील किया है। उसका इससे कुछ लेन देन नहीं था। गौर करें, तब यूसुफ को उसके अपने ही भाइयों ने और अपने ही लोगों ने रद्द किया और उसने गैर कौम में से दुल्हन ली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यीशु ने किया। यहूदियों ने उसे रद्द किया और उसने गैर कौम से दुल्हन ली। अब आए यहाँ कुछ पढ़ें। मेरे पास कलाम का एक हवाला लिखा हुआ है, इमाल 15। और हो हर तरह से ये बिल्कुल हमारे उन्वान के मुताबिक है जिसको हम सीख रहे हैं। अब मैं ईमान रखता हूँ कि ये इमाल 15:14 है, दुरुस्त है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दुरुस्त है, ठीक है। शमौन ने बताया कि खुदा किस तरह नहीं आए। हम 13वीं आयत से शुरू करते हैं। जब वो खामोश हुए तो यकूब कहने लगा। अब आप देखें कि क्या वाक्य हुआ, वो गैर अकवाम की तरफ गए। देखें उनमें बेचैनी पाई जाती थी क्योंकि वो यहूदी थे, समझे। जब वो खामोश हो गए तो यकूब कहने लगा कि भाइयों मेरी सुनो। शमौन यानी शमौन पत्रस ने बयान किया कि खुदा ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की खातर एक उम्मत बनाए। देखे मेरी बीवी का नाम ब्रोय था और मैंने उसको ब्याह लिया तो वो ब्रहनम बन गई, समझे। यीशु ने अपनी कलीसिया या यूं कहें गैर कौम से अपनी दुल्हन को ले लिया। ये कलाम के मुताबिक है, बिल्कुल जैसे यूसुफ ने लिया था। अब इस पर तवज्जो दें, वो रूहें जो कुर्बानगाह के नीचे हैं, ठीक है। ये रूहें इसको समझने की कोशिश करें जो के मजबा के नीचे हैं। क्यों वो एक मैन जैसे गुनाहगार आदमी के हाथों से कत्ल हुए। देखें वो अभी तक वहाँ लाखों की तादाद में रुके हुए हैं, समझे, मगर वो यहूदी हैं। अब याद रखें कि वो क्या था, वो खुदा के कलाम की खातिर कत्ल हुए, यीशु मसीह की गवाही की खातिर नहीं। क्या आप इस बात को समझ गए। मगर याद रखें, खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की खातिर कलीसिया और कलीसिया के शहीद अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ कितने हैं जो इस बात को जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब उनके पास यीशु मसीह की गवाही नहीं थी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। वो यहूदी हैं और हिटलर उनसे नफरत करता था, एकमैन भी नफरत करता था, और स्टोलन भी, और बाकी तमाम दुनिया भी उनसे नफरत करती थी, समझे। लेकिन वो उस एतमाद पर पक्के थे जो कि उनके पास था, और उन्होंने उनको इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो यहूदी थे। क्या आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर भी इसी किस्म का तस्वीर रखता था। ये हकीकत है, उसने कहा यहूदियों को ले लिया जाएगा, वो मुखालफ मसीह हैं। देखें, लेकिन उसकी खिदमत फर्क थी और उसने अपनी खिदमत को नहीं देखा और कलाम को नहीं देखा। अब सच्चाई का कलाम आगे भेजा गया है। आप किस तरह हर वक्त कहेंगे कि इसराइल हमेशा सख्त था, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। ओ वरना वो नबी उस दिन वहाँ खड़ा होकर किस तरह कहेगा कि ए इसराइल तू एक घोड़े नुमा जानवर की मानिद है जिसका एक लंबा सिंग है। जब वो अपने सबसे बुरे पहलुओं को उसको दिखाने की कोशिश में थे तो उसने कहा क्यों? उसने कहा जो कोई तुझे बरकत देगा उसको बरकत मिलेगी और जो कोई तुझ पर लानत भेजेगा उस पर लानत होगी। ये ठीक है, ए इंसान तू ये किस तरह कर सकता है। एक जमाने में उनकी सोच थी कि खुदा माफ कर देगा। जब नबी ने देखा कि आसमान से तारीकी की चीजें यहूदियों के लिए आ रही हैं, तो वो नबी वहीं खड़ा रहा और खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ। उसने कहा ऐ मेरे खुदावंद, क्या तू अपने लोगों को अपने आप से अलहदा कर रहा है। खुदा ने कहा तुम्हारे पास वहाँ क्या पड़ा हुआ है। उसने जवाब दिया कि नापने वाला आसा। कहा ये आसा उठा और नाप कर बता कि आसमान कितना ऊंचा है। ओ देखें, और ये भी नाप कर बता समुंदर कितना गहरा है। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया मैं भी कभी इसराइल को नहीं भूल सकता। नहीं जनाब, वो इसराइल को कभी नहीं भूलने वाला। उसको अपने ही बच्चों को अंधा करना पड़ा। अब जरा इस पर गौर करें, उसने अपने ही बच्चों को अंधा कर दिया ताकि हमें मौका मिल सके और हमने उसकी परवाह ना की। अब आप अपने आप को इतना भी छोटा तसव्वुर ना करें कि 10 टन की गैलन का हेड पहनकर अब आपको पत्थरों पर रिंगना पड़े मगर इस तरह उसको कभी भी नहीं छू सकते। आप जानते हैं ये बड़ी खूबसूरत बात है। ओ मेरे खुदाया, जी हाँ, वो खुदा के कलाम के सबब गिरफ्तार किए गए। वो यहूदी थे, उनके पास उनकी शरीयत थी और वो उसके पाबंद थे। अब आपको पिछली रात याद है, समझे, और वो उसके पाबंद थे। वो यहूदी थे और उनके पास शरीयत थी और शरीयत खुदा का कलाम है और वो बिल्कुल उसके पाबंद थे। ये ठीक है, और ये गवाही पर कायम रहने के 22 कत्ल किए गए और यहाँ मजबे के नीचे उनकी रूहें थी। जबकि कलीसिया कप के ऊपर जा चुकी थी। अब देखें, ला इल्मी और अंधेपन में उन्होंने अपने मसीहा को कत्ल कर दिया और अब उसके लिए पछता रहे हैं। उन्होंने महसूस कर लिया है, मगर सब कुछ कर लेने के बाद उन्होंने उसको पहचाना। उन्होंने उसे तब देखा जब वो खुदा की कुर्बानगाह के सामने आए और अब खुदावंद का फजल उन पर है। अब देखें, किसी भी जरिया या किसी भी तरीके से वो मुकद्दसीन नहीं हो सकते क्योंकि उनको तो पहले ही जामे दिए जा चुके थे, लेकिन अब यहाँ वो खुदा के लोग यानी यहूदी हैं जो मजबा के नीचे रूहों की सूरत में हैं, जो खुदा के कलाम के सबब और गवाही पर कायम रहने के बायस कत्ल किए गए थे। लेकिन अब देखें कि उन पर खुदा का फजल होता है और यीशु उनमें से हर एक को सफेद जामा देता है। देखें, ओ मेरे खुदाया, उनको नापने का यही एक पैमाना है, जबकि कलीसिया जा चुकी है क्योंकि वो अपने मकसद के लिए वफादार थे और उनको अंधा कर दिया गया था। वो उसको जानते भी ना थे, हकीकत में वो उसको नहीं जानते थे और वो अपनी जानिब से बिल्कुल वही काम कर रहे थे जो कि खुदा ने उनको करने के लिए मुकरर किया था। और यहाँ यूहन्ना ने देखा कि कुर्बानगाह के नीचे रूहें हैं। अब देखें, वो उन रूहों को देखता है और देखें कि वो उनको क्या कहता है। उन्होंने पुकार कर कहा, ए खुदावंद, कब तक? देखें, और थोड़ी मुद्दत इंतजार करो, समझे? आए इसको कलाम में से देखें। जब उनको मालूम हो गया कि उन्होंने अपने मसीहा को कत्ल किया है, देखें, वो उसको जानते नहीं थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया तो उन्होंने अपनी गलती की कीमत चुकाई और वो कत्ल कर दिए गए। अब देखें कौन सा काम उनको करना पड़ा था। देखें, वो कत्ल के मुजरिम थे, बस वो कत्ल किए गए, समझे? वो चिल्ला रहे थे, उसका खून हमारी गर्दन पर हो, समझे? ये ठीक है। और उनको अंधा कर दिया गया था, और अब अगर उनको अंधा ना किया गया होता तो खुदा ने ये कह देना था कि इनको तन्हा छोड़ दो, ये इस काबिल नहीं है। चूँकि खुदा ने उनको खुद अंधा किया था, इसलिए उसका फजल उन पर हुआ। आमीन। अब हैरान कुन फजल की बात करें, उनमें से हर एक को जामा दिया गया क्योंकि तमाम इसराइल निजात पाएगा। उनमें से हर एक का नाम किताब हयात में लिखा है। ये सच है, यीशु उनको जामे देता है, मसलन जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। देखें, जब यूसुफ वहाँ खड़ा था तो बिलाखर उसने अपने महल में अपने तख्त पर से मजबा के जरिए उसने अपने मजबा पर से खुद को उन पर जाहिर कर दिया। उसने कहा, हर एक मुझे तन्हा छोड़ दे। और उसकी बीवी ऊपर महल में थी जहाँ दुल्हन होगी, और उसने उनसे कहा, उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? यहाँ पर वो उनसे अबरानी जबान में गुफ्तगू कर रहा था। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, ओ मेरे खुदाया, उन्होंने कहा, अब तू हमसे बदला ले रहा है? उसने कहा, एक मिनट इंतजार करो, खुदावन ने ये सब कुछ एक मकसद के तहत किया। क्या तुमने मुझे इसलिए बेदखल नहीं किया कि मैं जिंदगियां बचाऊं? खुदावन का शुक्र हो, हकीकत में यही बात थी। उसने कहा, अपने आप पर अफसोस ना करो। आपको याद है यूसुफ ने क्या कहा था? उसने कहा, अपने आप पर नालिश ना करो, अब हर एक चीज बिल्कुल ठीक है, सब कुछ खत्म हो चुका है। खुदावन ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजा है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है जब वो उसको आता हुआ देखेंगे तो वो उससे कहेंगे, हम जानते हैं तुम मसीहा है, लेकिन फिर उन जख्मों के निशानों का क्या होगा, समझे? उसने कहा, ओ, मैंने उन्हें अपने दोस्तों के घर ही से पाया है, दोस्तों से। फिर वो इस बात को महसूस करेंगे, वो 144,000 जो बाकी रह गए थे, बाइबल कहती है वो एक घर को दूसरे से जुदा करेंगे और वावेला करेंगे और ये कहते हुए जमीन पर इधर उधर फिरेंगे और कहेंगे कि हमने ये कैसे किया, हमने ये कैसे कर लिया, क्यों हमने अपने मसीहा को मसलूब किया, और चलाते हुए कहेंगे कि हमने अपने ही घर के इकलौते के साथ ऐसा किया, हमने ऐसा कैसे कर लिया। वो यहूदी जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मजहबी लोग थे और खुदा के चुने हुए थे, लेकिन उसने हमको लेने के लिए उन्हें अंधा कर दिया और हमने उसकी कदर नहीं की। गैर अकवाम की कलीसिया की अदालत क्या है? ये रहे आप, देखें, खुदा ने जानबूझकर उन्हें अंधा कर दिया ताकि वो हमें यीशु की दुल्हन के तौर पर ले सके, ताकि उसे उनमें से निकाले, समझे? उसने हर एक चीज पहले से तहरीर कर रखी थी। क्या आपने देखा है कि ये कौन सी रूहें हैं? ये शहीद मुकद्दसीन नहीं है, वो तो जा चुके हैं। ये ठीक बात है, अब गौर करें, वो अब जा चुके हैं, समझे? बस उनमें से हर एक को जामे दिए गए। और अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें, और अब खुदावंत के फजल का झुकाव उनकी तरफ है। यीशु ने हर एक को सफेद जामा दिया है, जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों पर फजल किया। और गौर करें, अगरचे यूसुफ के भाइयों ने उससे खलासी पाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका फजल उनके लिए था, समझे? ओ, ये ठीक बात है, ये बिल्कुल सच है। आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन देखें, खुदा ऐसा कर रहा था, समझे? खुदा ने तुम सबको ऐसा करने दिया ताकि वो मुझे वहाँ से निकाले और मुझे यहाँ लाए, ताकि मैं उन गैर अकवाम के लोगों की जान बचाऊं जहाँ से मैंने अपनी बीवी को लिया है। अगर मैं वहीं रहता तो मेरी कोई बीवी ना होती। अब मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, उसकी वजह से मुझे ये बच्चे मिले हैं। और कहा मैं और अब मैं तुम सबको लेने आ रहा हूँ, और तुम सब भी वो तमाम अच्छी चीजें लोगे। मैं आप तमाम को इस जगह लाने जा रहा हूँ, और हम सब यहाँ मिलकर एक बड़े खानदान की हैसियत से जिंदगी गुजारेंगे। देखें, समझे। उसने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा बुजुर्ग बाप अभी तक जिंदा है? हो। और अब देखें, उसने छोटे बिन्यामिन के साथ क्या किया, जो कि उनमें से 144,000 लोगों की मिसाल है, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। देखें, उसने क्या किया, वो सीधा भागकर बिन्यामिन की तरफ गया और उसकी गर्दन की तरफ झुककर उसके साथ बगल गिर होना शुरू कर दिया। देखे, उसका छोटा भाई जो कि उसके जाने के बाद खानदान में उसकी माँ से पैदा हुआ था, यानी कलीसिया, पहली ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, 144,000 जो कि उसकी गैर हाजिरी में पैदा हुए थे, जबकि वो घर से बहुत दूर गैर अकवाम में दुल्हन लेने के लिए गया हुआ था। ओ मेरे खुदाया, क्या वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? यहाँ है आप, बस आपने देखा कि वो कौन है, और यहाँ है वो। अब गौर करें, अगरचे उन्होंने यूसुफ से खलासी पाने की कोशिश की, मगर उसका रहम उन तक पहुंच गया। अगरचे उन्होंने यीशु से खलासी पाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी वापस उनके पास आता है, क्योंकि वो अंधे किए गए थे, और उनमें से हर एक को सफेद जामा देता है। बहरहाल, वो उनको वापस अपने मकदस में ले जाना चाहता है। ऐसा करने से वो कोई मुख्तलिफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने ऐसा कहा था। बहरहाल, मैं उन सबको बचाऊंगा, समझे? अब 10वीं आयत पर गौर करें, देखें, उन्होंने बदला लेने के लिए कहा, समझे? अब अगर वो दुल्हन होती तो स्टीफनस की तरह होती, ऐ बाप इनको माफ कर, आप जानते हैं, समझे? देखे, लेकिन ये सिर्फ यहूदी हैं जो अंदर दाखिल हुए, वो बदला लेने के लिए पुकार रहे हैं, दोबारा तवज्जो दें। देखे, उसने दोबारा कहा, गौर करें, ये वो नहीं है। उसने कहा, ये तुम्हारे भाई हैं, यानी यहूदी हैं, वो 100, अब वो बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ओ हम चाहते हैं तू हमारा बदला ले। उसने कहा, थोड़ी और देर, अब थोड़ी और मुद्दत इंतजार करो। अब गौर करें, मुझे ये पढ़ने दें, ये 10वीं आयत में है, ठीक है? और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोले, ए मालिक, ए कद्दूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन पर रहने वालों से हमारा बदला ना लेगा? उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और कहा गया, और थोड़ी मुद्दत आराम करो। देखें, क्या? और थोड़ी मुद्दत, जब तक के तुम्हारे हम खिदमत। देखें, अब ये क्या है, यहाँ नबी इसराइल को तालीम दे रहे हैं, समझे? जब तक के तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हो। देखें, जो के पहले से मुकर्रर शुदा है कि उनके साथ भी ऐसा हो, आप समझे, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। देखें, दूसरे लफ्जों में ये उनके लिए मुकरर है, ये कलाम है, और उन्हें इसे पूरा करना है कि थोड़ा और आराम करें। अब आपने अपने जामे ले लिए हैं और घर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे रहें, समझे, और थोड़ी देर इंतजार करें। अब तवज्जो दें, अब गौर फरमाएं, तेरे भाइयों को अभी कत्ल होना है, जिसका मतलब है 144,000 को अभी रंजो गम में मुब्तला होना है। उन 144,000 को जो बुलाए गए हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे पास वक्त होता, अगर खुदावंत की मर्जी हुई तो कल रात हम अगली मोहर को शुरू करने से पहले इस पर भी गौर करेंगे, समझे? अब इस पर गौर करें कि उनको भी मुखालफ मसीह के हाथों कत्ल होना है, हम इसमें से गुजरे हैं। और देखें, इसकी आखिरी सवारी में जब वो यहूदियों के साथ अपना अहद तोड़ता है तो ये बात वहाँ जाती है, समझे? और ये 144,000 यहूदी मुकाशवा 11 के उन दो गवाहों के जरिए बुलाए जाएंगे। अब आप याद रखें कि वो पेशनगोई करते हैं, आपने उसके मुतालिक पढ़ा है, कितनों ने उसके मुतालिक पढ़ा है? यकीनन हम सबको बाइबल पढ़ने से लगाव है। और ये पेशनगोई करते हैं, ये दोनों गवाह दानियल के 70 हफ्तों के आधे हिस्से में पेशनगोई करते हैं, ये आखिरी 3.5 साल है, याद करें हमने किस तरह दानियल के 70 हफ्ते लिए थे। मैंने कहा था कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जबकि हम यहाँ होंगे। मैं नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन फिर भी मैं किसी चीज ने मुझे बताया कि जब हम यहाँ होंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, समझे। गौर करें दानियल के दौर में। अब याद करें कि दानियल को बताया गया था कि मसीहा आएगा, शहजादा बल्कि ममसूर, और वो पेशनगोई करेगा। इसराइल के हिसाब से अभी वो 70 हफ्ते पूरे नहीं हुए, और 70 हफ्तों के दरमियान में मसीहा कुर्बान हो जाएगा और दायमी कुर्बानी खत्म हो जाएगी। क्या ये सच है? लेकिन अभी तक 3.5 हफ्तों का फैसला नहीं हो सका। इस हिस्से में वो गैर अकवाम में से दुल्हन लेगा। अब वो ऊपर जाती है, और जब वो ऊपर जाती है तो 2 नबी बनी इसराइल में आ जाएंगे, समझे। और वो रूहें जो शहीद हुई वहाँ नीचे हैं, सच्चे और हकीकी यहूदी कुर्बानगाह के नीचे हैं। उनके नाम किताब में लिखे हैं, जिन्होंने नेक काम किए और सही जिंदगी बसर की, जिन्होंने यहूदी निजाम के तहत जिंदगी बसर की। उन्हें एकमैन और कई दूसरों ने कत्ल कर दिया। दयानतदार लोग सैकड़ों की तादाद में वहाँ नीचे हैं। उनमें से करोड़ों को जर्मनी वालों ने मौत के घाट उतार दिया और तलवारों पर लटकाकर उनको कत्ल कर दिया, उनको जिंदा जला दिया, उनकी लाशों को भी जला दिया और उनके साथ जो कुछ भी था उसे जला दिया। उन तमाम बेहिस संगदिल लोगों ने जो तमाम यहूदियों से नफरत करते थे, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, ये सब उन्होंने किया। मेरा ख्याल है इस मुल्क को मुत्तहिद रखने में बाकी वजूहात के अलावा ये भी एक है, क्योंकि इन्होंने हमेशा यहूदियों की इज्जत की है और इनको एक मकाम दिया है। आप एक यहूदी की इज्जत करें तो खुदा आपकी इज्जत करेगा। अब वहाँ पर यहूदियों का एक ऐसा दस्ता भी था जो गद्दार, बिल्कुल गैर अकवाम की मानित था, लेकिन खुदा ने हकीकी यहूदी का नाम बनाए आलम से पहले ही किताब में लिखा है। और यहाँ वो इस वक्त कत्ल हो रहे हैं। और याद करें इसके मुतालिक, अब सोचें कि ये किस कदर हकीकत है। इसके बाद दुनिया की अकवाम ने लाखों मासूम यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पाक कलाम कहता है कि उनमें से हर एक इस वक्त बिल्कुल कुर्बानगाह के नीचे है, महसूस करें कि क्या हुआ था, और उनको सफेद जामे दिए गए हैं। और उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन क्यों? क्या इस वक्त हम बादशाहत में वापस नहीं जा सकते? जैसा कि आपको मालूम है कि यहूदियों की बादशाहत रूहे जमीन पर कायम होगी। यूहन्ना ने कहा कि बादशाहत कायम होगी, समझे। अब ये बादशाहत अंजील की है, क्या आप समझे। लेकिन यहूदियों की बादशाहत का प्रचार ये 2 नबी करेंगे। अब रूहे जमीन की बादशाहत पर गौर करें। आसमान की बादशाही का प्रचार यहूदियों के लिए, बल्कि मेरा मतलब है गैर अकवाम के लिए है, मगर बाद में यहूदियों की बादशाही, 1000 साला बादशाही जमीन पर कायम होगी। अब गौर करें, अब यहाँ इस पर तवज्जो दें। देखें, जबकि वो यहाँ मुनादी कर रहे हैं, इससे पेशतर कि वो 2 नबी कभी मंजर पर जाहिर हों, ये यहूदी जो कि एकमैन और दूसरे लोगों के हाथों कत्ल हुए थे, उनमें से हर एक को जो पहले से मुकर्रर शुदा थे फजल से सफेद जामे दिए गए हैं, उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया है। गौर करें, अब क्या हुआ? जैसे ही ये अमल हुआ, मैं वहाँ पीछे लगी हुई घड़ी को देख रहा हूँ। मुझे मालूम है कि हमें देर हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि देखें, मेरा ध्यान उन बेचारे साथियों की तरफ है जो वहाँ खड़े हैं। खुदा आपकी मदद करे। भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी उस दिन सफेद जामे दिए जाएंगे। आप जो ज्यादा देर खड़े होने के सबब कभी एक टांग पर और कभी दूसरी टांग बदल कर खड़े हुए हैं, और आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सारा दिन काम किया है, मैं जानता हूँ ये क्या है। और यहाँ देखें, मैं देख रहा हूँ कि आपके दरमियान कुछ औरतें भी खड़ी हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ मर्द हजरात अपनी जगह खवातीन को दे रहे हैं, और किसी ने अपनी जगह उस माँ को दे दी जिसके पास बच्चा है, और मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। देखें, और मुझे यकीन है खुदा भी देख रहा है। गौर करें, लेकिन मैं आपको ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहता। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं आपको इस मकाम तक पहुंचा दूं कि आप इस पैगाम को समझ जाएं। अब इन यहूदियों पर गौर करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इस मोहर के पीछे जो मुकाशफा है वो समझ आ जाए। देखें ये क्या है, ये रूहें जो कुर्बानगाह के नीचे हैं, ये कौन है? जरा ध्यान दें। अब दानियल के दौर में 70वें हफ्ते के दूसरे हिस्से में देखें। अब देखें कि बिल्कुल दरमियान में मसीहा का राबता खत्म हो जाता है। ये है दरमियान। अच्छा, तो अब 7वें का निस्फ क्या है? 3.5। मसीह ने कितना अरसा तालीम दी, ठीक है। अब लेकिन लोगों के दिलों में वहाँ एक और ऐद था, वो क्या था? दूसरे 3.5 साल देखें। और देखें क्यों, ठीक इसी दौरान वहाँ ये वाक्या क्यों हुआ कि 7 कलीसिया जमानों के अंदर से दुल्हन चुन ली गई और उठा ली गई। जब इस तरह हुआ तो वो तमाम यहूदी जो सख्त होने के सबब से कत्ल हुए थे और कुर्बानगाह के नीचे थे, खुदावंद आता और कहता है कि आप जानते हैं कि ये क्या था? अब मैं तुम में से हर एक को सफेद जामा दूंगा। उन्होंने कहा, कब तक ऐ खुदा, क्या अब हम मकदस में जा रहे हैं? उसने कहा, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे साथी यानी यहूदियों को भी अभी बहुत कुछ सहना है, उनको भी तुम्हारी तरह कत्ल होना है, जिस तरह तुमको कत्ल किया गया था। हैवान उनको अपने हाथों में लेगा जब वो अपना अहद तोड़ेगा। अब ध्यान दें और गौर करें कि एक मर्तबा, अब याद रखें कि वो नबी मुकाशवा 11 के मुताबिक ही पेशनगोई करेंगे। आप अपने हाथ उठाएं जिन्होंने पढ़ा है, समझे, और उनको ताकत बख्शी गई खुदा की मर्जी से। अब हम सिर्फ एक मिनट में हम मालूम करने वाले हैं कि वो कौन है। अब देखें ये नबी कौन है, और बाइबल यहाँ बताती है, यकीनन ये बताती है, यकीनन देखें। अब देखें, गौर करें, इन 3.5 हफ्तों के दौरान जिनमें वो पेशनगोई कर रहे हैं, और मुकाशवा यहाँ बयान करता है गालबन वो 1360 दिन तक नबुवत करेंगे। अगर अब यहूदियों का कैलेंडर और खुदावन के वक्त का कैलेंडर देखें तो 1 माह में 30 दिन होते हैं, और रोमी कैलेंडर ने इसको गलत मल्त किया है। एक बाकायदा कैलेंडर के मुताबिक 1 महीने में 30 दिन होते हैं। अब अगर आप इसको 30 दिन का लेते हैं तो इसमें 3.5 साल जमा करें, और हर माह 30 दिन का ही हो, तो फिर आप देखें कि आपको क्या हासिल होगा, 1260 दिन, 1260 दिन, 60 दिन, जो कि बिल्कुल 3.5 साल बनते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर कोई गलती नहीं है, बस ये इसी तरह से है, ये बिल्कुल इसी तरह से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से लकड़ी की चूल से चूल जुड़ी होती है। गौर करें कि उन दो नबियों ने यहूदियों में 3.5 साल तक मुनादी की, और उस दौरान उन 144,000 को बुलाया। और फिर गौर करें कि ये दोनों नबी मूसा और एलिया हैं, समझे। देखें, अब देखें, देखें उनकी खिदमत के मुतालिक गौर करें कि इन नबियों ने क्या किया। इनके पास इख्तियार था कि जब चाहें अपनी मर्जी से दुनिया को हर तरह की आफतों से तबाह कर दें। किसने ऐसा किया? मूसा ने। इनकी खिदमत के दौरान इनके पास आसमान को बंद करने का भी इख्तियार था ताकि बारिश ना हो। किसने आसमान को 3.5 साल तक बंद रखा? वो यहाँ हैं, ये वो हैं, समझे, ये वो हैं। देखें, इंसान जब मरता है तो ये अपना मुकाम तब्दील नहीं करता, वो अपना लबादा तब्दील नहीं कर सकता, समझे। देखें, जब सऊल की रूह बरगश्ता हो गई, उस वक्त रूहे जमीन पर कोई नबी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसका दुश्मन बहुत जोरावर था और वो उससे जंग करने जा रहा था, और वो ऐन दौर की जादूगरनी के पास गया। अब वो सिर्फ बैलों और बकरों की कुर्बानी के खून के साथ ही ये कर सकती थी। और उसने सैमुअल की रूह को पुकारा और ऊपर बुलाया, और जब सैमुअल ऊपर आया तो वो वहाँ नबी ही के जुबा में खड़ा था। यही नहीं बल्कि वो अभी तक नबी था। उसने कहा, तुमने क्यों मुझे मेरी आरामगाह से ऊपर बुलाया है? देखें, उसने कहा, ये जानते हुए भी कि तुम अब खुदा के दुश्मन हो। उसने कहा, इस वक्त से लेकर कल रात तक तू जंग में कूद जाएगा, और इस वक्त से लेकर कल रात तुम मेरे साथ होगे। और हकीकत में यही कुछ हुआ, समझे। सिर्फ यही नहीं, वो अब भी एक नबी था, समझे, और ये साथी भी अभी तक नबी हैं। खुदावन की मर्जी से चंद मिनटों के लिए हम इस बात की गहराई तक जाएंगे। देखें, ओ मेरे खुदाया, मैं तेरे कलाम से किस कदर मोहब्बत करता हूँ, और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं, आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। उनका काम दोबारा इस बात की तस्दीक करता है कि वो नबी मूसा और एलिया हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी खिदमत में मसरूफ रहे हैं। अब गौर करें, जिस तरह उन्होंने किया, इससे उनकी कोई तब्दीली नहीं आई। याद रखें कि ये इश्कास कभी नहीं मरे। अब इस पर एक लम्हे के लिए गौर करें। अब देखें, इससे पेशतर कि हम इसको खत्म करें, इस चीज से अपने जहन में खलल ना होने दें, एलिया की 4थी खिदमत को 5वीं खिदमत के साथ मिलाकर गलत ना करें। मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि गैर अकवाम की कलीसिया एलिया की तलाश में है, ठीक है, और वो यहाँ पर ऊपर यहूदियों के साथ है। याद रखें कि वो उनके पास 4थी बार नहीं आ सकता, क्योंकि ये दुश्मनों का नंबर है और उसको 5वां ही होना है। पहली मर्तबा वो आया तो बजाते खुद एलिया था, दूसरी दफा जब आया तो अलीशा था, और फिर जब वो 3री बार आया तो वो क्या था? योहन्ना बपतिस्मा देने वाला। फिर जब वो 4थी मर्तबा आता है तो वो 7वां फरिश्ता है, और जब वो 5वीं मर्तबा आता है तो वो मूसा के साथ खड़ा मुनादी करते हुए दिखाई देता है। यकीनन, जी हाँ, इसको गलत मलत ना करें। 5, अगर आप बाइबल के हिंदसों को जानते हैं तो 5 मेहनत, मुशक्कत और फजल का नंबर है, और उसने यही कुछ किया। अब देखें, आप जानना चाहते हैं कि ये कहाँ है? क्या यीशु मेहनत, मुशक्कत और फजल का सर चश्मा था? लफ्ज़ JESUSK और लफ्ज़ LABOR के भी 5 हिंसे हैं। क्या ये दुरुस्त है? आपसे मोहब्बत करने के लिए उसने मेहनत की, और अगर आप उसके पास आते हैं तो किस तरह आप उसके पास आते हैं? ईमान से, यानी FAITH और LABOR यानी मेहनत के साथ। क्या ये ठीक है? ईमानदार के लिए मेहनत ही फजल का नंबर है। ठीक है, गौर करें, पहला एलिया वो खुद था, दूसरा अलीशा था, और तीसरा योहन्ना था, और चौथा सातवां फरिश्ता या कलीसिया के लिए आखिरी पैगंबर मलाकी 4 और मुकाशवा 10:7 के मुताबिक। अब पांचवी मर्तबा कलीसिया के ऊपर उठाए जाने के बाद वो यहूदियों का यानी 144,000 का पैगंबर है। ये मुझे थोड़ा सा मजाक़ा खेज लगता है, गौर करें, समझे? देखें, अगर कोई सोचता है, देखें, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अभी समझ लें। अगर कोई अभी तक ये सोचता है कि वो मलाकी 4 की बहाली के मुताबिक यही सब कुछ वहाँ यहूदियों में भी करने जा रहा है और ये बिल्कुल एक ही चीज है, तो एक मिनट के लिए आप मुझे इसे दोबारा ठीक बयान करने दें। देखें, यहाँ जरा सी गलतफहमी है, क्योंकि याद रखें, मलाकी 4 में वो कहता है वालिदों का ईमान बहाल करेगा और औलाद को वापस उनकी तरफ माइल करेगा। अब मैं आपको खिदमत का फर्क बयान करके दिखाऊंगा। अगर वो औलाद का दिल वालिदों की तरफ माइल करने के लिए वापस आता है तो वो मसीह का इनकार करता है, वो वापस शरीयत की तरफ जाएगा। क्या ये ठीक है? अबाऊ अजदाद के पास शरीयत थी, क्या आप इस बात को समझ गए हैं? गौर करें, जब अलीशा मलाकी 4 की अपनी खिदमत पूरी करने के लिए आता है, देखें, मलाकी 4 में एलिया खुद अकेला आता है, लेकिन जब वो मुकाशवा 11 के मुताबिक यहूदियों में अपनी खिदमत के लिए आता है तो उसके साथ मूसा भी आता है। बस यहाँ कोई गलतफहमी नहीं, जरा सी भी नहीं है, समझे? क्या आपने इसे हासिल कर लिया है? जब अलीशा मलाकी 4 के मुताबिक आता है तो वो खुद अकेला है, एलिया मुनादी करेगा, ना कि एलिया और मूसा मुनादी करेंगे। एलिया रूनमा होगा, लेकिन बिल्कुल वही नबुवत जिसने कहा एलिया कलीसियाई दौर के इख्तितामी हिस्से में आएगा ताकि औलाद के दिल वापस हकीकी वालिदों के ईमान पर बहाल करे, यानी रसूली ईमान पर, जहां आपको वापस जाना है। जबकि मुखालफ मसीह ने उस ईमान को बुरी तरह उखाड़ दिया, लेकिन कलाम मुकद्दस की हर एक बात आपस में जुड़ी हुई और सच्ची है और वापिस बहाल होगी। देखें, वो खुद अकेला आता है, समझे? बाइबल कहती है जब वो कलीसिया के लिए आता है, बल्कि 144,000 के लिए आता है, तो बाइबल साफ बयान करती है कि वो दो हैं, वहाँ वो दो हैं, ना कि उनमें से एक है बल्कि दोनों हैं। उसकी पहली खिदमत ये नहीं कर सकती थी कि यहूदियों को वापस शरीयत की तरफ लाए, क्योंकि वो तो 144,000 के दरमियान मसीह की मुनादी करने के लिए आता है। आमीन, वो यहाँ है, वो मसीहा को जिसको वो रद्द कर चुके थे। आमीन, ये वो बात है। गलत फहमी का शिकार ना हूँ, इसमें जरा सी भी गलत फहमी नहीं है, कलाम झूठ नहीं बोलता है, जरा भी नहीं। खुदावंद की तारीफ हो। ओ, जब मैंने वो रोशनी देखी तो मैं उछलना कूदना शुरू हो गया। मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो। जब मैं बाहर बैठे हुए इस पर गौर कर रहा था कि एलिया पहले दौर में खुद गया और वो अकेला एलिया ही था, और जब मैं इसको दोबारा किसी दूसरी शक्ल में आते हुए देखता हूँ तो वहाँ पर दो थे, कहा ये यहाँ है और ये सब कुछ खुदावंद ही करता है। आमीन, अब मैं इसको देखता हूँ, हालेलुया, ये ऐसे ही है। अगर मैं इसको बयान ना करता तो किसी न किसी के जहन में शायद थोड़ा शुबा रह जाता, लेकिन उसने मुझे ये बयान करने को कहा है, इसलिए मैंने ये बयान कर दिया है। गौर करें, खुदा ने उनको मुस्तकबिल के लिए हकीकी खिदमत के लिए जिंदा रखा और उन्होंने इस खिदमत को बड़ी खूबसूरती से सर अंजाम दिया। देखें, जरा सोचें कि एलिया किरू ने 5 मर्तबा खिदमत की और मूसा ने 2 मर्तबा। देखें, उसने उन्हें मुस्तकबिल की खिदमत के लिए जिंदा रखा और ना ही उन दोनों में से अब तक कोई मरा है। क्या आप इस पर ईमान नहीं रखते हैं कि वो जिंदा हैं? वो दोनों सूरते तब्दीली के पहाड़ पर यीशु मसीह से बातें करते हुए दिखाई दिए, मगर याद रखें, उन्हें मरना जरूर है। अब देखें, अब हकीकत में मूसा मर गया था, लेकिन वो जी उठा था क्योंकि वो हकीकत में मसीह की एक मिसल था, समझे? कोई नहीं जानता उसे कहाँ दफन किया गया था। फरिश्ते आए और उसे ले गए, समझे, उसका ताबूत उठाने वाले फरिश्ते थे। हो क्यों? क्योंकि जिस जगह वो जा रहा था उस जगह पर कोई फानी इंसान नहीं जा सकता था, वो एक अहद के साथ वहाँ गया। ये बात है, उसका ताबूत उठाने वाले फरिश्ते थे, समझे, क्योंकि वो उसको उस मकाम तक लेकर जा रहे थे जिसे कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि शैतान भी नहीं जानता। उसकी मुकर्रब फरिश्ते से तकरार भी हुई, ये ठीक है। वो समझ नहीं पाया था कि मूसा के साथ क्या हुआ। उसने कहा, मैंने उसको वहाँ कांपते हुए देखा था, मैंने उस सरजमीन से नजर हटाई और पीछे बच्चों की तरफ वापस देखा और मैंने उसे कांपते हुए देखा था, और वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही उसने चट्टान पर कदम रखा तो बस यहाँ पर मैंने उसको आखिरी मर्तबा देखा था। वही चट्टान है, वही चट्टान है। मुझे अपनी राह के इख्तिताम पर उस चट्टान पर खड़े होना है। जी हाँ जनाब, अब मेरा सियाफाम भाई अक्सर यहाँ आकर ये गीत गाया करता था। अगर हो सके तो यकीनन यही करूँगा, उसी चट्टान पर खड़ा रहूँगा जिस पर मूसा खड़ा हुआ। जी हाँ जनाब, हो ये वही चट्टान है जिस पर मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ और ईमान की रूह में वहाँ खड़ा हूँ। मगर याद रखें, एलिया वो थक गया था क्योंकि उसके सामने बहुत ज्यादा काम था, बस उसने उसको खूबसूरती से सरंजाम दिया। इसलिए खुदावर ने उसे वापस घर ले जाने के लिए एक आतशी रथ की सवारी भेजी। ये हकीकत है, क्या ये सच है? उसको ऊपर उठा लिया गया, उसने मौत का मजा ना चखा क्योंकि उसे जिंदा उठा लिया गया था, क्योंकि मुस्तकबिल में उसके लिए एक और काम था। देखें, वो एक और आदमी को मस्सा करके अपनी रूह में आगे आगे भेजता है, लेकिन उनको मौत का मजा चखना जरूर है। अब हम मुकाशवा के 11वें बाप की तरफ चलते हैं, अब निकालें। बहरहाल मैं तो यही हूँ, आए इसको पढ़ें, मुकाशवा 11। गौर करें और देखें, अगरचे वो दोनों मरे नहीं हैं। जी जनाब, उन दोनों को मौत का मजा चखना जरूर है। जी हाँ जनाब, उनकी खिदमत के इख्तिताम के बाद वो मौत का मजा चखेंगे। मुकाशवा 11वें बाप की 7वीं आयत से शुरू करते हैं। जब वो अपनी गवाही दे चुके तो वो हैवान जो अथागढ़ से निकलेगा उनसे लड़ेगा। हो मेरे खुदाया, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि वो जुनूनी दोबारा वापिस आ गए हैं, समझे। ठीक है, ठीक है, जो अथागढ़ से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। लेकिन देखे क्या होता है, अब यहाँ वो अपनी असली शक्ल में है और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था, देखें, यानी यरूशलम में। अब उनको मौत का मजा चखना है, क्या वो मौत का मजा नहीं चखेंगे? चखेंगे, मगर अपनी खिदमत के इख्तिताम के बाद, ये ठीक है। क्यों? सातवें फरिश्ते की खिदमत, सातवें फरिश्ते की खिदमत, एलिया की सातवें फरिश्ते की खिदमत, नहीं, क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हो सकती? बल्कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सातवें फरिश्ते की खिदमत मूसा से क्यों नहीं ली गई, जबकि वो भी अमर था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के एलिया था। क्यों नहीं, क्यों खुदा ने उसे नहीं भेजा और कहा, एलिया तूने उन तमाम मुख्तलिफ जगहों पर अपने काम को बड़ी मेहनत से किया है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं मूसा को भेजूं। क्यों? मूसा की खिदमत को देखें, एलिया तमाम कौमों का नबी था, लेकिन मूसा महज यहूदियों को शरीयत देने वाला था। आमीन। मूसा वहाँ कहता है, यही वजह है कि वो एलिया के साथ आया। तब यहूदी कहते हैं, इंतजार करो, हम अभी तक शरीयत को थामे हुए हैं, लेकिन यहाँ मूसा खुद खड़ा है और यहाँ एलिया उसके साथ खड़ा है। ओ समझे, वो सिर्फ यहूदियों के पास आया, समझे, मूसा फक्त यहूदियों के पास आया, लेकिन एलिया नबी को तमाम कौमों के लिए भेजा गया, लेकिन मूसा फक्त यहूदियों का नबी और शरीयत देने वाला था, समझे, यही उसका पैगाम था, यानी शरीयत देना। लेकिन एलिया का पैगाम क्या था? उसका पैगाम बाल कटी हुई औरतों और तंजीमों के लिए था। जी हाँ जनाब, और उसने वाकई उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने रंग बिरंगे चेहरों को बताया, तुमसे कुत्तों की भूख मिटाई जाएगी। उसने हकीकत में उनको रेजा रेजा कर दिया। और जब उसकी रूह योहन्ना में आई तो वो बियाबान से निकला और वही काम किया। ठीक है, उसने कहा, मत सोचो हम इससे या उससे ताल्लुक रखते हैं, खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। वो हेरोदियास के पास गया और कहा, और तू मुझे बताना चाहती है कि तूने अपने शोर के भाई से शादी की है? कहा, ये गैर शरी है, तुझे ऐसा करना रवा नहीं। ओ मेरे भाइयों, क्या बात है, उसने उसे बता दिया। यकीनन, गौर करें, उन रूहों को अभी और थोड़ा आराम करना है ताकि उनके दूसरे हम खिदमत यानी 144 भी कत्ल कर दिए जाएं। और क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं? ये बाइबल के तमाम अज़ा का मुतहिद होना है। हकीकत में मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं आपको जल्दी ही जाने दूंगा, मगर मुझे आपसे चंद चीजें और बयान करनी है, अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो। मैं जानता हूँ बहुत गर्मी है, मुझे पसीने आ रहे हैं, मगर सुने, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। ये बहुत मुनासिब है और ये मेरे दिल में शोले की मानित जल रहा है। देखें, मुझे उम्मीद है आप इसे नहीं भूलेंगे। मुझे उसकी मौजूदगी में इसे बयान करने दें। खुदावंद के फजल व करम से बहुत अरसा नहीं लगेगा जब खुदावंद मुझे और मेरे लोगों को सफेद जामे पहने हुए देखेगा। आप इसको याद रखें, याद रखें। आपको कहानी याद होगी, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, गैर अक्वाम की दुल्हन, अब वो वहाँ है, वो तमाम सफेद जामों में थे। मैं नींद से उठा, मुझे एक इबादत के लिए जाना था। इस बात को एक साल या ज्यादा अरसा गुजर गया है। एक सुबह मैं नींद से उठा, मैं उठकर बैठ गया, मैंने कहा, मेरी प्यारी, अपनी बीवी से कहा, मगर उसने बिल्कुल हरकत ना की। और बच्चों को मुझे उठकर उनको उसी पुरानी जगह पर स्कूल ले जाना होता था। खैर, मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। आप जानते हैं कि आप उठकर पलंग के साथ किस तरह टेक लगाते हैं। हमारे घर में एक पुरानी फैशन का एक पलंग है, बस उसी तरह मैंने भी पलंग के साथ पीछे टेक लगा ली। और मैंने सोचा, अरे भाई, तुम पहले ही 53 साल के हो गए हो, अगर तुम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो तो बेहतर है कि उसे शुरू कर दो, क्योंकि थोड़े अरसे के बाद तुम और भी बूढ़े हो जाओगे, समझे? मैंने सोचा, अब आप जानते हैं, ये बिल्कुल सच है। मैंने सोचा, अरे भाई, तुम जानते हो कि मैं बहुत ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जल्द ही मर जाऊँ, मैंने कहा। और ये मेरे वालिद की हयात से एक साल ज्यादा है, समझे? मैंने सोचा कि मुझे जल्दी चले जाना है, मैंने देखा है, और यहाँ मैंने अभी तक खुदा के लिए कुछ नहीं किया। मैंने सोचा, मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं खुदा के लिए कुछ करूं। मैंने सोचा, और अगर मैं इस काम को करने जा रहा हूं, तो मुझे इसको जल्दी कर लेना चाहिए, और मुझे इल्म नहीं कि इस काम को कैसे करना है, ये बात है। मैंने सोचा, अरे भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इतनी देर जिंदा रहूं कि उसे आते हुए देख सकूं, क्योंकि मैं कोई रूह या भूत बनना नहीं चाहता। देखें, मैं हमेशा रूह से डरता था, और अब देखें, अब जानते हैं, देखें, जैसे कि इस किस्म के ख्याल कि मैं भाई नेवल से मिलूंगा तो ये एक सफेद बादल की मानित इर्द गिर्द घूमता होगा, और मैं कहूंगा, हेलो भाई नेवल, और वो किसी और तरीके से कहेगा, हेलो भाई ब्रैनम, क्योंकि वो बोल नहीं सकेगा, लेकिन मुझे मालूम होगा कि वो भाई नेवल ही है। जी हाँ, मैं हमेशा की तरह इससे हाथ मिलाना चाहूँगा, क्योंकि इंसान होने के नाते मैं यही कुछ जानता हूँ। देखें, मैं उससे हाथ मिलाना चाहूँगा, मगर उसके हाथ नहीं होंगे, वो तो नीचे कब्र में सड़ चुके होंगे, समझे? मैंने सोचा, मेरे खुदाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे उस रास्ते से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपसे सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मैं मरने से डरता था, इस ख्याल से नहीं कि मैं खो जाऊंगा, बल्कि रूह बनना नहीं चाहता था, मैं आदमी ही रहना चाहता था। देखें, मैं आमदेसानी का इंतजार करना चाहता था, मैं बिल्कुल उसी तरह रहना चाहता था, मैं इर्द गिर्द घूमने वाली किसी किस्म की रूह में तब्दील नहीं होना चाहता था, बस मैं वहाँ लेटा हुआ था, इसके मुतालिक सोच रहा था। लेकिन फौरन वहाँ कुछ वाकया हुआ, अब आप जानते हैं और आप तमाम इस रोया से वाकिफ है। देखें, और अगर वो एक रोया थी तो मैंने ऐसी रोया कभी नहीं देखी थी, हालांकि बचपन ही से, जबकि मैं एक छोटा बच्चा था, तब ही से मैंने देखता आ रहा हूँ। और तब यकायक कुछ वाकया हुआ, मैंने खुद को किसी जगह जाते हुए महसूस किया। मैंने सोचा, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? और देखें, मैंने सोचा, मैं पहले ही मर चुका हूँ और ऊपर जा चुका हूँ, समझे? और मैं एक जगह पर गया, मैंने सोचा, मैंने ईमान रखा कि मैं पीछे मुड़कर देखूंगा। मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल इसी तरह हकीकत है जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हूँ, देखें। और मैं पीछे देखने के लिए मुड़ा, और मैं वहाँ पलंग पर लेटा हुआ था, और मैं अपनी बीवी की तरफ से पलटकर दूसरी तरफ लेट गया। मैंने सोचा, खैर, यकीनन ये दिल का दौरा है, समझे? मैंने सोचा, ठीक है, अच्छा हुआ मैं फौरन ही मर गया हूँ, जो कि मरने का अच्छा तरीका है। बस मैंने सोचा कि ये दिल का दौरा है, मुझे तकलीफ उठानी नहीं पड़ी। मैंने देखा और ख्याल किया, अच्छा, अब ये अजीब बात है, मैं ठीक वहाँ लेटा हूँ और यहाँ भी मैं ही खड़ा हूँ। बस मैं मुड़ा और ये एक बहुत बड़े मैदान या जैसा कि किसी वसी जगह की तरह था, बिल्कुल जैसे नीली घास के मैदान की मानिंद हो। और मैंने कहा, खैर, मैं हैरान हूँ, ये सब कुछ क्या है? और अचानक जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ हजारों हजार की तादाद में जवान औरतें आ गईं, जिन्होंने सफेद जामे पहने हुए थे, उनके बाल कमर तक लटके हुए थे और नंगे पांव थी, और वो सीधी मेरी तरफ भागती आ रही थी। मैंने सोचा, अब ये सब कुछ क्या है? मैं मुड़ा और वहाँ पर पीछे देखा तो मैं वहाँ लेटा था। मैंने इसी तरह से ऊपर देखा तो वहाँ वो आ गई। मैंने अपनी उंगली को दांत से काटा तो मैंने कहा, मैं बिल्कुल सो नहीं रहा क्योंकि मैं महसूस कर सकता था। मैंने कहा, खैर अब यहाँ कुछ अजीब चल रहा है। और वो तमाम औरतें वहाँ दौड़ती हुई आ रही थी और मैंने इतनी खूबसूरत औरतें कभी नहीं देखी थी और वो सब मेरी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। और जब वो मेरी तरफ दौड़ी, आप जानते हैं कि मेरी क्या हालत थी, कुछ इसी किस्म की। देखें, जबकि इन लोगों ने मुझे औरत से नफरत करने वाला कहकर पुकारा है, मगर मैं ऐसा सोचता हूँ। देखिए, मेरी सोच ये है कि एक नेक औरत एक ताज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो औरत जो नेक नहीं है, जैसा कि सुलेमान ने कहा है कि वो आपकी हड्डियों में बोसीदगी की मानिद है, बस मैं यकीनन होशियार और बदनाम औरतों के लिए किसी काम का नहीं हूँ। बस वो तमाम सब औरतें आईं और उन्होंने अपने बाजू मेरे गिर्द फैलाने शुरू कर दिए। अब ये बिल्कुल खिलाफे मामूल था। आप जानते हैं कि मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस वो ऐसा कर रही थी। अब मैं इसको इस तरह से कहना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं एक मिली जुली भीड़ के अंदर हूँ, लेकिन वो औरतें थी और उनमें से हर एक ने मुझे गले लगा लिया और कहा, हमारा बेशकीमत भाई। और एक मुझे गले लगाती और फिर दूसरी गले लगाती थी। मैं वहाँ खड़ा उनको देख रहा था। मैंने सोचा, अच्छा अब ये सब कुछ क्या है, देखें। और वो वहाँ खड़ी हुई थी। मैंने सोचा, ये वाकया क्या है। मैंने वहाँ फिर पीछे मुड़कर देखा और मैं वहाँ पलंग पर लेटा था और यहाँ मैं खड़ा था। मैंने सोचा, अब ये कैसी उलझन है, मैं इसको समझ नहीं सका। वो औरतें पुकार रही थी, ओ हमारे बेशकीमत भाई, ओ मुझे गले लगा रही थी। और अब वो हर अंदाज और हर एहसास से औरतें ही लग रही थी। बहनों, अब मैं माफी चाहता हूँ जब मैं ये कहता हूँ, लेकिन आप अपने डॉक्टर की बात सुनते हैं और अगर हमारे जहन साफ नहीं है तो हम क्रिश्चियन नहीं है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता। खुदा इस बात को जानता है कि मैंने एक पाकीजा जिंदगी बसर की है। जबकि मैं एक छोटा लड़का ही था तो खुदा के फरिश्ते ने मुझको बताया कि शराब या सिगरेट या जिस्म की ख्वाहिश से अपने आप को गलीज ना करना, और ये सच रहा है। और खुदा के फजल से मैंने उसके फरमान को बजा लाया है। जब मैं गुनाहगार ही था तब भी मैं औरतों के चक्कर में नहीं पड़ता था। और जब भी कोई आदमी किसी औरत को गले लगाता है, चूंकि वो मर्द और औरत हैं और वो मुख्तलिफ खुलिये रखते हैं और उनके मिलने से जज्बात पैदा होते हैं। अब मुझे परवाह नहीं आप कौन हैं। अगर आप साफ दिल हैं तो ये ना कहें कि ऐसा नहीं होता। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ आप में फर्क खुलिये होंगे। आप वहाँ पर गुनाह नहीं करेंगे, वहाँ एक तब्दीली होगी। वहाँ औरतों के साथ सिर्फ भाइयों जैसा ही प्यार होगा। अगर औरत को उसके ठीक मकाम पर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि एक औरत जिसने अपना चाल चलन दुरुस्त रखा हो और एक अच्छी खातून की मानद जिंदगी बसर कर रही हो तो वो रूहे जमीन पर हीरे की मानद है। और मैं हर उस चीज को पसंद करता हूँ जो खूबसूरत है। मेरे ख्याल में एक औरत जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखे और एक इज्जतदार खातून की मानद जिंदगी बसर करे, वो वाकई इज्जत के लायक है। और मैं ये ईमान रखता हूँ, मैं सोचता हूँ, जो औरत अपना चाल चलन दुरुस्त नहीं रखती, क्या वो ऐसे ही नहीं जैसे मुखालफ मसीह और मसीह है। मैं हर कुदरती चीज को पसंद करता हूँ, जिस तरह के घोड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन वो ठीक अपनी कुदरती खूबसूरती में हो, या इस किस्म की कोई और चीज हो, एक खूबसूरत पहाड़, एक खूबसूरत खातून, एक खूबसूरत आदमी, या कोई भी चीज जिसको खुदा ने बनाया है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ। और वो अच्छी थी, इसकी परवाह नहीं कि उन्होंने मुझे गले लगाया। और आप ये भी जानते हैं कि वो औरतें थी, लेकिन वहाँ कभी भी किसी किस्म का गुनाह नहीं होगा। वहाँ मर्द और औरत के जज्बाती एहसास बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। खुदावंद का शुक्र हो, वो मेरी हकीकी बहनें थी। मैंने देखा और मैंने अपने हाथों को देखा तो वो जवान नजर आ रहे थे, और मैंने खुद को देखा तो मैं भी जवान था। और मेरे जवानी के अयाम ही से मेरे सर से बाल गायब हैं, क्योंकि मैं बच्चा ही था। तो एक हजाम ने मेरे सर पर कार्बोलिक एसिड डालकर मेरे बाल जला दिए थे। और मेरे साथ हमेशा इस किस्म की बातें होती रही हैं कि मुझे जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे सर की जिल्द अभी तक बहुत नर्म है, देखें, और मेरे बालों की जड़ें अभी तक इसमें हैं, लेकिन इनको कार्बोलिक एसिड ने जला के रख दिया है, इसलिए बाल कभी भी नहीं उग सकेंगे। बहुत अरसा पहले जब मैं गया और जब वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए बालों की एक विग ले आई, छोटे बालों की विग, जिसको पहनकर मेरा सर ढांपा जा सकता था। लेकिन इसे पहनते हुए मैं हमेशा शर्म महसूस करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये फ्रेब है और मैं किसी भी किस्म की रयाकारी नहीं करना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि मैं उनकी टोपी रख लिया करूँगा, और फिर कुछ अरसे के लिए मैंने ऐसा भी किया। और आप जानते हैं फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बिशप कहना शुरू कर दिया और कहने लगे, ये तो बिशप बनना चाहता है, समझे। मैंने सोचा चलो इस टोपी को भी छोड़ दो, और टोपी उतारते ही मुझे जुकाम लग जाता है, और ऐसे ही चलता रहा। अगर आप अभी इन खिड़कियों को खोल दें या किसी भी तरह थोड़ी सी हवा अंदर दाखिल हो गई तो भाई मुझे फौरन जुकाम लग जाएगा। मैं एक डॉक्टर के पास मशवरे के लिए गया और उससे पूछा कि वो क्या कहता है। उसने कहा, खैर देखो तुम्हारे मसाम खुले हैं, तुम मुनादी की वजह से पसीने में शराबूर हो जाते हो और जब हवा चलती है तो वो जुकाम के जरासीम वहाँ लाती है और वो बलगम पैदा करते हैं और ये तुम्हारे गले में चली जाती है और दूसरी सुबह तुम्हारा गला शरशर करता है। बस यही कुछ है। और बस ओ मेरे दोस्तों, आप जिनके बाल हैं, आपको किस कदर शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके बाल हैं। ये ठीक है, समझे। खैर फिर मुझे मालूम हुआ कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। इन दिनों में जबकि मेरे दांत नहीं हैं और अगर मैं कुछ दांत नहीं लगवाता तो फिर मुझे दांतों के बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा। बस अगर कोई साथी खैर मैं नहीं समझता कि इससे बढ़कर एक आदमी के लिए कुछ और बुरा हो सकता है कि उसे असली बालों की जगह विग पहननी पड़े, तो यह अजीब है। फिर ये उन औरतों से बढ़कर होगा जो कि अपने बालों को संवारने के लिए इनमें चूहे और बिल्लियां लगाती हैं। देखें, लेकिन बेशक अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप पर मुनसर है, किसके लिए करते हैं, समझे। और इसका इंसार इस पर है जो कुछ आप कर रहे हैं। बहरहाल उस जगह पर खड़े हुए मैंने महसूस किया कि मेरे बाल दोबारा उगाए हैं और मैं जवान था और वो सब भी नौजवान थी। मैंने सोचा, खैर ये वाकया अजीब सा लगता है। वो वहाँ मौजूद हैं और वो दौड़ रही थी और मैंने उनको आते हुए देखा और मैंने देखा कि होप आ रही है। आप जानते हैं वो 22 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। वो आज भी हमेशा की तरह खूबसूरत है। आप में से बहुतों को उसकी बड़ी काली आंखें याद हैं। वो जर्मन थी, उसके स्याह बाल कमर तक लंबे लटके हुए थे। मैंने सोचा अब जब वो यहाँ आएगी तो वो कहेगी बिल। मैं जानता हूँ जब वो आएगी तो वो कहेगी बिल। मैं देख रहा था कि उनमें से हर एक औरत आ रही थी और मुझे गले लगा रही थी और कह रही थी, ओ हमारे बेशकीमत भाई, हम आपको देखकर खुश हैं। मैंने सोचा वो एक ही लिबास में मलबूस थी मगर उनके बाल मुख्तलिफ थे। आप जानते हैं स्याह बाल, सुनहरे बाल और सुर्ख बाल थे और वो आ रही थी और वो तमाम जवान थी। और जब वो मेरे करीब आ गई तो मैंने देखना चाहा कि वो मुझे किस तरह पुकारती है और उसने ऊपर निगाह की और कहा, ओ हमारे बेशकीमत भाई। उसने मुझे गले लगाया और आगे बढ़ गई। इसके बाद कुछ और औरतें आईं और मुझे गले लगाया। मैंने एक शोर सुना और जब उस तरफ निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आदमियों का एक बहुत बड़ा ग्रोह आ रहा है और वो तमाम वो जवान साथी थे और 20 साल की उम्र तक के थे और उनके भी स्याह और सुनहरी बाल थे। वो भी सफेद जामों में मलबूस थे और नंगे पांव थे। वो मेरी तरफ दौड़कर आए और मुझे गले लगाना शुरू कर दिया और पुकारने लगे, बेशकीमत भाई। मैंने सोचा और मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ मैं अभी तक लेटा हुआ था। मैंने सोचा अब ये अजीबो गरीब वाक्या है। उसी लम्हा एक आवाज मुझसे बात करती हुई गुजरी। मैंने आवाज देने वाले को बिल्कुल नहीं देखा। उसने कहा, तुम इकट्ठे हो चुके हो, तुम अपने लोगों के साथ इकट्ठे हो चुके हो। तब किसी आदमी ने मुझे उठाया और किसी ऊंची और बड़ी जगह पर इस तरह बैठा दिया। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया है। उसने कहा, जमीन पर तुम एक रहनुमा थे। मैंने कहा, अच्छा, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वो आवाज जो मुझसे बातें कर रही थी, मैं उस आवाज देने वाले को नहीं देख सका अब, क्योंकि बातें करने वाली आवाज मुझसे बहुत ऊपर थी। मैंने कहा, अच्छा अगर मैं मर चुका हूँ तो मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं वो मेरी जिंदगी था, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और उसने कहा कि तुम इस वक्त उसको नहीं देख सकते, वो अभी भी बहुत ऊंचाई पर है। देखें, ये जगह अभी तक कुर्बानगाह से बहुत नीचे थी। देखें, छठी जगह जहाँ आदमी जाते हैं, समझे, ना के सातवीं जगह जहाँ खुदा खुद रहता है, बल्कि ये छठी थी। और वो सब वहाँ थे और वो मेरे करीब से गुजर रहे थे। और मैंने कहा, ऐसा लगता था कि वो लाखों की तादाद में वहाँ थे, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और जब मैं वहाँ बैठ गया तो वो औरतें और आदमी अभी तक मेरे पास आ रहे और मुझे गले लगा रहे थे और मुझे बाई कहकर पुकार रहे थे। और मैं वहाँ बैठ गया। उस आवाज ने फिर मुझसे कहा, तुझे अपने लोगों के साथ इकट्ठा कर दिया गया है, जिस तरह यकूब को उसके लोगों के साथ इकट्ठा कर दिया गया था। मैंने कहा, क्या ये सब मेरे लोग हैं? क्या ये सब ब्रहनम खानदान के लोग हैं? उसने कहा, नहीं, ये सब वो लोग हैं जिनको तू तब्दील करके मसीह के पास लाया है। जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत औरत दौड़ी आ रही थी। वो भी बाकी सब की तरह दिखाई देती थी और उसने मुझे गले लगाया और कहा, ओ बेशकीमत भाई, और मुझ पर निगाह की। मैंने सोचा, ओ मेरे खुदाया, वो एक फरिश्ते की मानिंद थी और वो वहाँ से गुजर गई। उस आवाज ने कहा, क्या तूने उसको पहचाना नहीं। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैंने उसको नहीं पहचाना। उस आवाज ने कहा, तुम्हारी रहनुमाई में ये मसीह के पास आई थी और 90 बरस की उम्र में रहलत कर गई थी। कहा, तुम जानते हो कि ये क्यों तुम्हारे मुतल्लिक इतना खुश हैं? मैंने कहा, ये खूबसूरत लड़की 90 बरस की थी। उसने कहा, जी हाँ, लेकिन अब ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। कहा, यही वजह है कि वो कह रही है मेरे बेशकीमत भाई। मैंने सोचा, ओ मेरे खुदाया, मैं इससे खौफजदा था। क्यों? इसलिए कि वो लोग असल थे और वो अब कहीं नहीं जा रहे थे, और वहाँ होते हुए ना वो थक रहे थे। मैंने कहा, अच्छा तो फिर मैं यीशु को क्यों देख नहीं सकता? उसने कहा, खैर अब वो किसी दिन आएगा और पहले तुम्हारे पास आएगा और पहले तुम्हारी अदालत करेगा। और कहा, और ये वो लोग हैं जो तुम्हारी रहनुमाई में तब्दील होकर मसीह के पास आए थे। मैंने कहा, आपका मतलब है कि मैं एक रहनुमा था और इसलिए वो मेरी अदालत करेगा? उसने कहा, हाँ। और मैंने कहा, क्या हर रहनुमा की अदालत इसी तरह होगी? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, पालूस के मुतल्लिक क्या ख्याल है? उसने कहा, उसकी अदालत भी उसके लोगों समेत होगी। ठीक है। मैंने कहा, अगर उसका ग्रोह अंदर दाखिल होगा तो मेरा भी होगा, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल उसी कलाम की मुनादी की है और यही सब कुछ है। मैंने कहा, जिस तरह वो यीशु नाम में बपतिस्मा देता था, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया है। मैंने भी वही मुनादी की है। और लाखों की तादाद में लोग एक साथ पुकार उठे और कहा, हम इस पर कायम हैं। मैंने सोचा, ओ मेरे खुदाया, अगर इस जगह पर आने से पेशतर मैं ये जानता तो मैं लोगों को इस काबिल बनाता कि वो यहाँ आए। उन्हें इस मौके को खोना नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ देखें। और फिर उसने कहा, अब वो किसी दिन आएगा और फिर अब देखें, यहाँ पर हम ना खाएंगे ना पिएंगे ना सोएंगे, बल्कि सब एक होंगे। ठीक है, ये कामिल नहीं, ये कामिल से बढ़कर है। ये जलाल नहीं, ये जलाल से बढ़कर है। कोई ऐसा नाम नहीं है जो आप सोच सकें, या लुगत में कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो इसको बयान कर सकें। आप अभी पहुँचे हैं, बस यही काफी है। मैंने सोचा, ठीक है, ये मुकम्मल होगा। और फिर हमारा दूसरा कदम क्या होगा? उसने कहा, फिर जब यीशु आएगा और हम और वो तुम्हारी खिदमत के मुताबिक तुम्हारी अदालत करेगा, फिर हम जमीन पर वापस जाएंगे और अपने जिस्म इख्तियार करेंगे। अच्छा, मैंने इसके मुतालिब कभी नहीं सोचा था, मगर हकीकतन ये कलाम है। कहा, फिर हम जमीन पर वापस जाएंगे और अपने जिस्म इख्तियार करेंगे, तब हम खाएंगे। हम यहाँ नहीं खाते, ना ही यहाँ हम सोते हैं। कहा, जब हम वापस जमीन पर जाएंगे तो तब हम जमीन पर खाएंगे। मैंने सोचा, ओ मेरे खुदाया, ये हैरत अंगेज नहीं है? ओ मेरे खुदाया, और मैं इससे डरता था। इस जगह पर आने के लिए मैं मौत से क्यों डरता था? मगर दर हकीकत ये कामिल है, कामिल से भी बढ़कर है, बहुत बढ़कर है। ओ, ये कितना शानदार है। देखें, हम बिल्कुल कुर्बान गाह के नीचे थे, समझे? देखें, सब उसकी आमद के इंतजार में कुर्बान गाह के नीचे थे। गौर करें, ताकि वो आए उनको ले जो सो रहे हैं, और उनके जिस्म को दोबारा जिलाए जो मिट्टी में है, और फिर हमें ले, जिस तरह यीशु फरदौस से आया और इब्राहिम, इसहाक और दूसरे तमाम को ऊपर ले गया। आप जानते हैं कि वो भी पहली कयामत के इंतजार में थे। जब वो शहर में दाखिल हुए तो बहुत सारे लोगों ने उनको देखा। ये बिल्कुल कलाम के मुताबिक है। ये रोया बिल्कुल कलाम की हकीकत के मुताबिक थी, या ये जो कुछ भी था, लेकिन हकीकत में कलाम के ऐन मुताबिक थी। और मैंने कहा, खैर, क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है? और फिर मैंने सोचा, ये वाकई हैरत अंगेज है। मैंने कुछ घोड़े की तरह हुन हनाने की आवाज़ सुनी और मैंने देखा तो मेरा छोटा काठी वाला घोड़ा था, छोटा प्रिंस, जिस पर मैं अक्सर सवारी किया करता था। मैं उसके मुतालिक बहुत सोचता था। यहाँ वो मेरे साथ खड़ा था और उसने अपना सर मेरे कंधों पर रखा ताकि मुझे गले लगाए। आप जानते हैं, जब मैं उसको चीनी खिलाया करता था तो मैं अपने बाजू उसकी गर्दन के गिर्द डाल दिया करता था। मैंने कहा, प्रिंस, मैं जानता था कि तू वहाँ होगा। फिर मैंने महसूस किया कि कोई चीज मेरा हाथ चाट रही है, तो वहाँ मेरा पुराना शिकारी कुत्ता भी था। लेकिन जब मिस्टर शॉट ने यहाँ उसको जहर दे दिया था, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं मिस्टर शॉट को कत्ल कर दूंगा। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी जब उसने मेरे कुत्ते को कुचले में जहर लगाकर दे दिया था, और मेरे बाप ने मुझे ऐन उसी वक्त पकड़ लिया जब मैं बंदूक लेकर उसको मारने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था। और मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, ठीक है। मैं अपने कुत्ते की कब्र पर गया और उसे बताया और कहा, फ्रिटीज, तुम मेरे साथ एक साथी की तरह रहे हो। तुम मुझे कपड़े पहनाते और स्कूल भेजते थे, और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। अब उन्होंने तुम्हें मार दिया है। मैंने कहा, फ्रिटीज, मैं तुमसे वादा करता हूँ वो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं किसी भी वक्त उसको सड़क पर जाते हुए पकड़ लूंगा और उसके पीछे दौड़ूंगा, समझे? और मैंने कहा, मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए उसको पकड़ूंगा। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने उस आदमी को मसीह के पास लाने में रहनुमाई की और उसको यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया और उसकी तिब्बी मौत पर उसको दफनाया भी। जी हाँ जनाब, क्योंकि उसके 2 साल बाद मैं तब्दील हो गया था। उसके बाद मैं चीजों को किसी और ही अंदाज से देखता था, समझे? मैंने उससे नफरत करने की बजाय प्यार करना शुरू कर दिया। और पस तब फ्रिट्स वहाँ खड़ा हुआ था और मेरा हाथ चाट रहा था और मैंने देखा, मैं रो भी नहीं सका। आप रो नहीं सकेंगे क्योंकि वहाँ खुशी ही खुशी थी। आप उदास नहीं होंगे क्योंकि वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आप मरेंगे नहीं क्योंकि वहाँ जिंदगी ही जिंदगी थी, समझे। आप बूढ़े नहीं होंगे क्योंकि वहाँ सब जवान थे। और यही बिल्कुल हकीकत है और यही कामिल है। मैंने सोचा, ओ हैरत अंगेज है, और लाखों लोग, ओ मेरे खुदाया, देखें मैं तो अपने ही घर पर हूँ। और उस वक्त मैंने एक आवाज को पुकारते हुए सुना जो कह रही थी, वो तमाम जिनको तू हमेशा प्यार करता रहा है, ये मेरी खिदमत का अजर था, मुझे अजर की जरूरत नहीं है। मगर उसने कहा, तमाम जिनको तू हमेशा प्यार करता था और जो हमेशा तुझे प्यार करते थे, खुदा ने उन तमाम को तुझे दे दिया है। मैंने कहा, खुदावंद की तारीफ हो। मैंने अजीब सा महसूस किया। मैंने कहा, ये अजीब मामला है। मैंने अजीब सा महसूस किया। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पलंग पर मेरा जिस्म हरकत कर रहा था। मैंने कहा, ओ मेरे खुदाया, मैं यकीनन वापिस नहीं जाना चाहता, मुझे वापिस ना जाने दे। लेकिन अंजील की मुनादी करना मेरा मकसद था। सिर्फ एक सेकंड में इसी तरह मैं वापिस पलंग पर था, समझे। कोई दो माह से ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। क्या आपने सुना होगा और बिजनेसमैन वॉइस रिसाले में पढ़ा होगा, देखें ये रिसाला तमाम दुनिया में जाता है और भाई नॉर्मन, मेरा अंदाजा है कि वो आज रात यहीं कहीं है। उसने उसका तर्जमा करके एक किताबचे की शक्ल में भेजा था। ये किताबचा हर जगह पर गया और बहुत से खादमों ने उस पर लिखा और कहा, मगर मेरे पास एक है, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ। बेशक ये सैकड़ों की तादाद में थी, लेकिन मगर एक आदमी भागता हुआ आया और कहा, भाई ब्रहनम, आपकी रोया बिजनेसमैन वॉइस मैगजीन में छपी है। मैं टॉमी निक्स की तारीफ करता हूँ, अगरचे वो अब इस बिजनेसमैन में काम नहीं करता, मैं नहीं जानता क्यों, मगर अब वो नहीं है जैसा मैंने कहा। उसने वैसा ही शाया किया उस तसलीसी मैगजीन में। उसने कहा, जहाँ मैंने कहा था, जिस तरह पालूस ने यस्सू के नाम में बपतिस्मा दिया और लोगों को हुक्म दिया कि ऐसा ही किया करो, मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। देखें, उसने बिल्कुल वही किया जो ठीक था, समझे। और तब मैंने सोचा, ओ खुदाया, उस खादम ने रिसाले में लिखा और कहा, भाई ब्रहनम, आपकी रोया, जिसको रोया कहा जा सकता है, कहा, अब मैं तफसीर के लिए नहीं कहना चाहता, अगर पालूस, अगर मैं पहले आसमान पर उठाया गया और ये कुछ देखा, तो पालूस के मुतल्लक क्या ख्याल है जो तीसरे आसमान पर उठाया गया, वो क्या था। देखें, अगर वो उठाया गया तो उसने कहा, मैं उसके मुतल्लक बयान भी नहीं कर सकता, अगरचे उठाया गया, मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं आपको यहाँ बयान ही नहीं कर सकता। लेकिन उस खादम ने कहा, भाई ब्रहनम, आपकी रोया बिल्कुल कलाम के मुताबिक थी और बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन जब आपने घोड़े का जिक्र किया तो ये कुछ अलग सी थी, एक घोड़ा आसमान में, कहा। अब इस कलीसियाई खादम की अकल और जहन देखें, गौर करें। उसने कहा, आसमान बनी नो इंसान के लिए बनाया गया था, घोड़ों के लिए नहीं। अच्छा, मैं बैठ गया। बिली, मेरा बेटा जो कि यहाँ मौजूद है, उसने 3 या 4 माह पहले पुराने कलीसिया दफ्तर में खत लिखा था। मैंने कहा, मेरे प्यारे भाई, मैं आपकी अकलमंदी और कलाम के साथ वाबस्तगी पर हैरान हूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आसमान पर हूँ, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये बहिश्त नमा कोई जगह थी, क्योंकि मसीह अभी तक ऊपर था, समझे। मगर मैंने कहा, शायद इससे आपकी तसल्ली ना हो, आप मुकाशवा 19 को पढ़ें। जब यीशु आसमानों के आसमान से निकलकर बाहर आया तो वहाँ एक सफेद घोड़े पर सवार था और तमाम मुकद्दसीन जो उसके साथ हैं, वो भी सफेद घोड़ों पर सवार थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी हाँ, दर हकीकत यही है। और फिर उसी जगह पर उनमें से एक उकाब और एक बैल की मानिक दिखाई देता था और एक, ठीक है, ओ मेरे खुदाया, वो घोड़े कहाँ से आए जो एलिया को लेने आए थे। देखें, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इंसानी दिमाग सिर्फ चाहता है कि दूसरों पर नुक्ता चीनी करे, और ये ठीक बात है। अब तवज्जो दें, मैं सिर्फ सोच रहा था, जैसे कि मेरा प्यारा खुदाप्रस्त भाई योहन्ना, देखें, मैंने अभी सोचा, इबादत खत्म करने से पहले उसका जवाब देने के लिए ये मौजू जगह है। अगर योहन्ना ने निगाह की तो उसने अपने भाइयों को देखा, देखें, उसके भाइयों को थोड़ी देर अभी मुसीबत उठानी है, देखें। और वैसा ही खुदावंद खुदा ने मुझे ये इजाजत दी कि मैं अपने भाइयों और मुकद्दसों को देखूं, जो कि बरा की आमद के इंतजार में हैं। तवज्जो दें, मेरे लोग वो कुर्बानगाह के नीचे नहीं थे, लेकिन ये थे, ये शहीद थे, समझे। मेरे लोग शहीदों के मजबा के नीचे नहीं थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस हकीकत को करीब से सुने। मैं ईमानदारी से 10 मिनट में, यानी 10 बजे तक इसको खत्म कर दूंगा, अगर थोड़ा छोड़ना भी पड़ा तो भी। और फिर कल देखेंगे। देखें, वो मेरे लोग नहीं थे, और जो खुदा ने मुझे दिखाया वो दुल्हन थी, वो शहीदों वाले हिस्से में नहीं थे, नहीं शहीदों की कुर्बानगाह के नीचे नहीं, लेकिन उनको सफेद जामे दिए गए क्योंकि उन्होंने जिंदा कलाम की माफी वाले फजल को कबूल किया। मसीह ने उनको सफेद जामे दिए। मैं नहीं सोचता उनके खुलने से, या अगरचे मैं सोचता हूँ कि इस पांचवी मोहर के खुलने से, बल्कि मेरा ईमान है कि ये हम पर खुल चुकी है। मैंने इस वक्त खुदा की अकलमंदी के ताबे होकर इस मुकाशवे को अच्छी तरह बयान किया है। मत सोचें कि ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा तंजीमों के खिलाफ रहा हूँ और मेरा कभी उनके साथ कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन ये मुझ पर खुल चुकी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आज के दिन इस पांचवी मोहर के खुलने से हमें एक तालीम मिली है जिसके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि वो रूहें जो सोई हुई हैं। देखें, अब मैं यकीन करता हूँ कि हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ये अकीदा है। मेरा ख्याल है ये उस बात की नफी करती है, वो सो नहीं रहे, वो जिंदा हैं, बल्कि उनके जिस्म सो रहे हैं। देखें, लेकिन रूहें कब्रों में नहीं है, वो खुदा की हजूरी में है और मस्बा के नीचे है। इस नुक्ते पर मैं अपने एक प्यारे भाई से इत्तेफाक नहीं करता, और मुझे मालूम है और यहाँ बैठे हुए उसके कुछ लोगों को देख रहा हूँ, जैसा कि मुझे ये एहसास है कि वो एक बहुत बड़ा उस्ताद था और डॉक्टर था जिसने इल्मे इलायात की डिग्री और PhD हासिल की थी। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरे ख्याल के मुताबिक वो दुनिया से जा चुका है, लेकिन वो एक उम्दा आदमी और अच्छा मुसन्नफ भी था। ये भाई ऊरिया स्मिथ था, जो कि दानियल और मुकाशफात का मुसन्निफ था। अब आप लोग जो कि उसकी तालीम के पैरोकार हैं, देखें, अब मैं ये नहीं कहता, मैं ये तकब्बुर से नहीं कहता, लेकिन मैं सिर्फ, देखें, लेकिन यहाँ भाई स्मिथ इसको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोई हुई रूहों के मौजू को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, सोई हुई रूहें, और आसमान पर कुर्बानी की कोई कुर्बानगाह नहीं है, जैसा कि एक ही कुर्बानगाह है जिसके मुतल्लिक वो ईमान रखता है और वो बाखूर की है। लेकिन प्यारे अजीजो, मैं अपने भाई से इख्तलाफ नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि दूसरी तरफ हम उनसे मुलाकात करेंगे। उस अजीम उस्ताद की मुखालफत नहीं कर रहा, देखें, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये किस तरह उनकी नफी करता है, और आखिरी अयाम में इस मोहर के खुलने से सोई हुई रूहों वाला नजरिया खत्म हो जाता है, समझे? वो जिंदा है, वो मरे नहीं है, समझे? गौर करें, अब इस तरफ तवज्जो दें। अब अगर आसमान पर कोई कुर्बानी की कुर्बानगाह नहीं है, तो गुनाह के लिए जो कुर्बानी दी गई थी वो कहाँ पड़ी है, यानी बर्रा? वहाँ कोई जगह तो ऐसी होगी जहाँ जबा शुदा खून आलूदा बर्रा पड़ा हुआ है, वो खून कहाँ है? अब देखें, बखूर को खुशबू के लिए जलाया जाता है, जिसके मुतालिक बाइबल कहती है कि वो ईमानदार लोगों की दुआएं हैं। अगर कुर्बान गाह पर कोई कुर्बानी नहीं है, तो दुआएं कभी भी कबूल नहीं हो सकती। ये सिर्फ कुर्बानी का खून ही है जो कुर्बान गाह पर है, जिसके वसीला से दुआएं खुदा तक जाती हैं। देखें, भाई स्मिथ गलती पर थे, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मैंने इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। देखें, मैं उनके काम के लिए बरादराना मोहब्बत के साथ उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो गलती पर थे। पांचवी मोहर ने इसको अयां कर दिया है, समझे? और देखें, इसके साथ और चीजों को भी आपने ठीक तरह से समझ लिया है, समझे? देखें, मैं आपके सवालों के लिए इंतजार करूंगा, अगर मैं ठीक है। अब वो ऐद का संदूक कहाँ था? वो कफारे का जख्मी जबा खून में लतपत बरा कहाँ था, ताकि दुआएं बखूर की मानिंद पहुँचे? गौर करें, बाइबल फरमाती है, जब हमारा जिस्मानी खेमा जिसमें हम रहते हैं गिराया जाएगा, तो एक और है जो हमारा मुंतजिर है, यही मैंने उन मुकदसों को देखा, समझे? देखें, जब एक बच्चा, बहनों, मैं दोबारा आपसे माफी चाहता हूँ इस खुली गुफ्तगू के लिए जो कि मैं नौजवान बहनों से कर रहा हूँ, लेकिन देखें, जब औरत हमला होती है और उसके पेट में गोश्त का लोथड़ा जिस तरह उल्टी सीधी छलांगे लगा रहा होता है, आप समझ गई हैं? ये एक कुदरती जिस्म है और जिस तरह कुदरती जिस्म को कुदरत परवान चढ़ा रही होती है। क्या कभी छोटे बच्चे की पैदाइश से पहले आपने अपनी बीवी पर गौर किया है? वलादत के आखिरी अयाम में वो हमेशा खूबसूरत और शफीक हो जाती है, अगरचे वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी ना हुई हो, लेकिन उस वक्त वो जरूर हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है किस कदर पाकीजगी आजजी महसूस करती है? आप एक माँ पर गौर करें और आप देखें कि कुछ गुनाहगार लोग एक हमला माँ का मजाक उड़ाते हैं। मेरे ख्याल में ये हमाकत है, वो एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने वाली है। क्या कभी आपने गौर किया है माँ के गिर्द एक मीठा सा एहसास होता है? ये क्या है? एक नन्ना सा रूहानी जिस्म है, रूहानी जिंदगी है, जो इस इंतजार में होती है कि जब वो बच्चा पैदा हो तो वो उसके नन्हे जिस्म में दाखिल हो। अब ये महज इकलौता है, लेकिन जब ये पैदा होता है तो बस यही है, कुदरती जिस्म रूहानी जिस्म के साथ मुत्तहिद हो जाता है। और फिर देखें, बाइबल बताती है कि अब हम खुदा से पैदा हुए हैं, हम एक रूह कुदूस से पैदा शुदा हैं, जो मसीह की सूरत में हमारे अंदर है। खुदा का बेटा हम में हुकूमत करता है, और जब ये जमीनी जिस्म खत्म हो जाता है तो रूहानी जिस्म जमीन के पेट में से निकल कर आता है। वहाँ एक जिस्म है जो उसको पाने के लिए मुंतजिर है। अगर ये जमीनी खेमा गिर जाता है तो एक इंतजार में है। ये फानी जिस्म लाफानी में तब्दील हो जाता है, ये जमीनी खेमा आसमानी खेमा में बदल जाता है। देखें, इससे मेरी मुराद क्या है? एक कुदरती जिस्म है जो कि गुनाहगार है, लेकिन उसको उसी तरह का बनाने के लिए एक और जिस्म है जिसमें हमको दाखिल होना है। और मैं खुदा का इस कदर शुक्र गुजार हूँ कि मैंने आपके भाई और खादम होने की हैसियत से उन लोगों को देखा है। बस इस जिस्म में मेरी मदद करें और उनको मेरे हाथों से पकड़े रखें। ये ठीक है, गौर करें, देखें, मूसा और अलीशा पर गौर करें। मूसा की वफात के बाद और अलीशा को आसमान पर उठा लिया गया था, लेकिन जब वो ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था और वो अपने समझने बोलने और सुनने वाले होशो आवाज में था और यीशु के मसलूब होने से पेशतर उससे बातें करता हुआ दिखाई दिया, अब उसके पास किस किस्म का जिस्म था? सैमुअल को देखें, उसकी मौत के तकरीबन 2 साल बाद जादूगरनी ने उसको उस गुफा में पताल से वापस बुलाया और साउल से गुफ्तगू की। साउल ने बात सुनी और उसका वापस जवाब दिया और वो बातें बताई जो होने वाली थी। अभी तक उसकी रूह तब्दील नहीं हुई थी, वो एक नबी था। जब एलिया की रूह किसी आदमी पर आएगी तो वो उसको बिल्कुल एलिया की तरह इस्तेमाल करेगी। वो बियाबान में जाएगा, वो बियाबान से प्यार करेगा, वो गलत औरतों से नफरत करेगा, वो तंजीमों के खिलाफ होगा, वो किसी की खातिर किसी दूसरे को नहीं मारेगा। और ये क्योंकि ये एलिया की रूह होगी। जब भी वो आया, हर मर्तबा ऐसा ही हुआ, समझे? मूसा भी वही आदमी होगा। और अब हम मुकाशवा 22:8 में यही देखते हैं। अब इसको तय करने के लिए जो इसके वो रूहें, अब इसको देखें, इस मोहर के खुलते वक्त कुर्बानगाह के नीचे थी, जिनको मसीह की मौत के बाद कलीसिया के ऊपर जाने के वक्त के दरमियान शहीद किया गया था एक्मैन ग्रुप के जरिए। और इसी तरह तमाम हकीकी यहूदियों के नाम किताब में दर्ज हैं। भाइयों, अगर आप गौर करें तो कलामे मुकद्दस के मुताबिक वो पुकार सकते थे, वो बोल सकते थे, वो गुफ्तगू कर सकते थे, सुन सकते थे, और उनकी पांचों हिस्से काम कर रही थी। वो कब्र में नहीं थे, वो बेहोशी की हालत में सोए हुए नहीं थे, वो बिल्कुल जाग रहे थे और बोल सकते थे, गुफ्तगू कर सकते थे और सुन सकते थे और बाकी सब काम भी कर सकते थे। क्या ये ठीक है? ओ मेरे खुदाया, हमारी मदद कर। 2 मिनट, आमीन। माफ करें, मैंने आधा घंटा आपको बिठाए रखा। नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए था, समझे, ये ठीक है, समझे। लेकिन देखें, मेरी समझ के मुताबिक ये बेहतरीन से भी बेहतरीन है, और मुकाशवा के मुताबिक जो कि आज सुबह रोशनी निकलने से पहले मुझे दिया गया, जो कि यीशु मसीह ने मुझे दिया था। यही वजह है कि दूसरी मोहरों की तरह पांचवी मोहर भी खुल चुकी है उसके फजल से जो उसने मुझे दिया है, आपके और मेरे साथ भी होता रहे। हम इसके लिए उसके शुक्रगुजार हैं और उसकी मदद से मैं उसके इतना करीब रहने की कोशिश करूंगा जितना कि मैं रह सकूंगा, दूसरों को ये तालीम देते हुए कि ऐसा ही किया करो, जब तक कि मैं आपके हमरा उसके फजल में उससे जा ना मिले। और मैं इसके लिए उससे प्यार करता हूँ। इस मोहर के मुतालिक मेरे इल्म के मुताबिक यही सबसे बेहतर था, और मैं सच्चे दिल से ईमान रखता हूँ कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी मोहर का बिल्कुल ठीक मुकाशफा हम पर खुल गया है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। कलवरी की सूली पर अब बड़ी खामोशी और एहतराम के साथ खुदा के हजूर आए, जैसा कि हमने देखा है कि मोहर खुल चुकी है और खुदा ने अपने ही प्यारे बच्चों को चुना और उनको अंधा कर दिया और उनको भेजा क्योंकि उसके अपने ही इंसाफ में गुनाह की अदालत की जरूरत थी। इस पर गौर करें, उसका इंसाफ पाकीजगी और इंसाफ मांगता है। एक कानून बगैर सजा के कोई हैसियत नहीं रखता, और बजाते खुद अपने कानून को तोड़कर खुदा खुदा नहीं रह सकता। यही वजह है कि खुदा को इंसान बनना पड़ा। वो इसके लिए किसी कायम मकाम या एक बेटे को, एक आम बेटे को नहीं ले सकता था, या किसी और को। खुदा दोनों दोनों बन गया। यीशु खुदा और बेटा दोनों बन गया, और यही तरीका था जिस तरह वो इंसाफ कर सकता था। खुदा को खुद सजा बर्दाश्त करनी पड़ी। ये इस तरह नहीं चल सकता था कि वो ये सब किसी और शख्स पर डाल देता। बस चुनाचे यीशु की शख्सियत खुदा थी जो जिस्म में जाहिर हुई और इमैनुअल कहलाई। और ऐसा करने और दुल्हन को हासिल करने और गैर अक्वाम के खोए हुए ग्रोह को बचाने की खातिर उसे अपने ही बच्चों को अंधा करना पड़ा। उनको जिस्मानी सजा देनी पड़ी क्योंकि उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, लेकिन उसके फजल ने उनको जामे अनायत किए। लेकिन देखें क्या हुआ। उसे ये इसलिए करना पड़ा कि हमें मौका मिले, तो हम उसकी मोहब्बत के मौके को किस तरह ठुकरा सकते हैं। अगर आज रात इस इमारत में कोई बूढ़ा या जवान आदमी मौजूद है जो इस वक्त इस मौके को ठुकराए हुए है जो खुदा ने दिया हुआ है, और वो आज रात खुदा की इस पेशकश को कबूल करना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जैसा कि हम जानते हैं फिर हो सकता है आपको शहीद होना पड़े। लेकिन आपके लिए एक सफेद जामा मुहैया किया गया है, और अगर इस वक्त खुदा आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता है तो क्यों आप उसको कबूल नहीं करते। अब आए हम दोबारा अपने सरों को झुकाएं। अगर कोई शख्स या अशखास यहाँ मौजूद है जिनके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है, या अपने ईमान की बिना पर उसके बहाए हुए खून की खातिर जो खुदा ने आपके लिए बहाया है उसे कबूल करना चाहते हैं, उसने जो कुछ हमारी खातिर बर्दाश्त किया क्या कोई फानी इंसान कर सकता है। वो इस कदर गमनाक था कि उसकी रगों में खून और पानी अलैदा अलैदा हो गए। कलवरी की तरफ रवाना होने से पेशतर उसके जिस्म से खून के कतरे टपक रहे थे। जो कुछ उसने करना था उसके लिए वो इस कदर गमगीन और शिकस्ता था। वो इससे इनकार भी कर सकता था, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए रजामंदी से ये काम किया। क्या आप ऐसी मिसाली मोहब्बत को रद्द कर सकते हैं? इन मोहरों के खुलने से बिल्कुल वाज़े हो गया है कि आपने उसके लिए क्या किया है। और खुदा ने आपके लिए क्या किया है, और आप अपनी जिंदगियां खुदा को देने के लिए तैयार हैं, और अगर वो आपको मुखालफे मसीह के हाथों से छीन लेता है जिसके हाथों में आप इस वक्त हैं, तो क्या आप अपने हाथ ऊपर उठाकर उसकी पेशकश को कबूल नहीं करेंगे और ये कहेंगे, ऐ खुदा, मैंने आज तुझे पहचाना है और मैं तेरे फजल की इस पेशकश को कबूल करता हूँ। और भाई ब्रैनम, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है ताकि मैं हमेशा ताबेदार रह सकूँ। अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। उसको दिल से कबूल करें, दिखावे के लिए ना ऐसा करें। जहाँ भी बैठे हैं उसे कबूल करें, क्योंकि याद रखें, आप अपने हाथों को कभी नहीं उठा सकते अगर आपको किसी ने उबारा ना हो, और खुदा के सिवा ये किसी ने नहीं किया। बस अब देखें, आपने कलाम को मुकम्मल तौर से खोल कर देख लिया है, आपने देख लिया है तमाम गुजरे हुए अदवार में क्या होता रहा, मगर पिछले 20-30 सालों में आपने देखा है कलाम की साबित शुदा बहाली को देखा गया है। आपने देखा है कि कलाम वही कहता है जो कुछ हो रहा है या जो होने वाला है। तब मसीह के उन कामों पर ईमान रखते हुए आप जहां भी तशरीफ फरमा है अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहें, इस घड़ी मैंने फैसला कर लिया है, मैं मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करता हूं। अब अपनी बाकी जिंदगी उसके लिए वक्फ करूंगा, और मेरी तमन्ना है कि खुदा मुझे अपने पाक रूह से मामूर करे। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया तो हौज आपके लिए इंतजार कर रहा है। अब आएं दुआ करें। ऐ खुदा, बहुत से लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं, और मेरा ईमान है कि तू वही खुदावन यीशु है जिसने बहुत अरसा पहले सलीब पर हमारा कफारा दिया था। उन मोहरों के खुलने से और उन चीजों से जो गुजरे हुए सालों में जहूर पजीर हुई हैं, मैं तह दिल से ईमान रखता हूँ कि तेरे रहम का दरवाजा करीब होना शुरू हो गया है, और अब तू सफर के लिए बिल्कुल तैयार है ताकि अपने लोगों को मखलसी दे। जबकि उसका दरवाजा खुला हुआ है और हर जगह है जैसा कि नूह के दौर में था, और ये कीमती रूहें जो इस जिस्म में रहती हैं, जो किसी दिन बर्बाद होने वाला है, और वो रूहें उनके अंदर से फानी हाथ उठाए हुए हैं, इनका इकबाले जुर्म और एतराफ ये जाहिर करता है कि वो तेरी इस तजवीज को अपनी निजात के लिए कबूल करना चाहते हैं, इस बंद किताब के खुलने से जो हम पर खोली गई है। आज रात इनको यीशु मसीह की पाकीजगी के जामे अता कर इनकी रूहों को उसमें डांप दे, ताकि उस दिन ये तेरे सामने खड़े होने के काबिल हो सके जो कि बिल्कुल करीब है। इनको मसीह के खून से कामिल कर दे। खुदावंद खुदा, अगर ये यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा याफ्ता नहीं है तेरे दिए हुए मुकाशवे के मुताबिक जो तूने मुझे दिया है, और ये जानते हुए भी कि पालूस ने हुक्म दिया कि लोगों को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, अगरचे उनमें से कई लोग थे जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था, और उनको दोबारा बपतिस्मा दिया गया ताकि वो पाक रूह हासिल करें। इमाल 19 के मुताबिक, सच्चाई के बादशाह, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इन्हें कायल कर और ये तेरी ताबेदारी करें। इनके इकरार, कबूलियत और पानी तक जाने की ताबेदारी के इवज इनको पाक रूह से मामूर कर दे, ताकि आइंदा जिंदगी में जुरत के साथ तेरी खिदमत कर सके। अब मैं इनको खुदा के मसलूब बर्रे यीशु मसीह के स्पुर्द करता हूँ। आमीन, आमीन। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। और कलवरी की सूली पर मेरी निजात खरीदी।
to you that had your hands up, obey the commanding of the Spirit.
अब आप जो हाथ उठाए हुए हैं, पाकरू की तामील करें, गुनाहों से तोबा याफ्ता लोगों पर कलाम के हकाम की मोहर होगी, अपने हर अमल से उसकी पैरवी करें, और आसमानी बाप इस बर्दाश्त के इवज आपको अजर दे, खुदावंद आपको बरकत दे। अब कल रात आज की तरह अपने कागज और पेंसिलें साथ लाएं। हमारा ईमान है कि खुदा की मर्जी से बिल्कुल 7:30 बजे हम यहाँ होंगे, और मेरे लिए दुआ करें कि कल रात खुदा मुझ पर छठी मोहर को जाहिर करे, ताकि मैं उसको बिल्कुल उसी हालत में आप तक पहुँचा सकूँ जिस तरह वो मुझे दे। तब तक के लिए दोबारा गाएंगे, सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि उसकी तारीफ करनी है जो कि सलीब पर मुआ और हमारा फिदिया बना। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं आपका पास्टर यहाँ है। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया।